अध्याय 21 एक आदमी दो विलक्षण प्रतिभाओं का दमन करता है। यदि दो प्रमुख शक्तियां युद्ध में उतरती हैं तो इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से कोन परिवार के पवित्र पुत्र फैंग चेन और किन के युवराज जैसे पवित्र पुत्रों के लिए, जिन्हें उनकी संबंधित शक्तिशाली ताकतों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। एक बार जब वे गिर जाते हैं तो उनके पीछे की ताकतें अपने विरोधियों को कीमत चुकाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकती हैं। हालांकि सर्प वंश का ये पवित्र पुत्र अभी तक योग्य नहीं है, एक अर्थ में उसका दर्जा पर्याप्त ऊंचा नहीं है। इसके अलावा दानव और सर्प कुल अपने निर्दयी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और हो सकता है कि वे इस कारण अपने पूरे कुल को दोषी न ठहराएं। मैं कोई दबंग व्यक्ति नहीं हूं। जब तक तुम घुटने टेक कर माफी मांगकर और अपनी गलतियां स्वीकार करके मैं तुम्हें जाने दूंगा। पसंद आप पर निर्भर है, फोंग चेन ने शांति से कहा। असंभव, बिल्कुल असंभव, यंग तियानई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हम कभी भी घुटने टेक कर माफी नहीं मांगेंगे और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल यंग तियानई अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, इसलिए उसके शब्द कुछ व्यंग्यात्मक हैं। सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने यंग तियानई की ओर देखा और चाहा कि वह उसे थप्पड़ मारकर मार डाले। आप तो पहले से ही जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं, फिर ऐसी कठोर बातें क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये था कि सर्प वंश के पवित्र पुत्र को यह आभास हो गया था कि फैंग चेन सचमुच उसे मारना चाहता था और वह भी बिना किसी संकोच के। लेकिन जब से यंग तियानई ने ऐसा कहा था, उसने यंग तियानई के समर्पण का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि यदि वह समर्पण कर दे और सर्प कुल में वापस चला जाए तो परिणाम गंभीर होंगे। सर्प वंश एक बेहद निर्दयी परिवार है। आपकी हैसियत पूरी तरह आपकी ताकत पर निर्भर करती है। एक बार जब आप सर्प वंश के अधीन हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, चाहे आपकी हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने फोंग चेन के विपरीत पवित्र पुत्र के रूप में अपनी स्थिति को अपूरणीय नहीं माना। इसे भूल जाओ, हम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगने वाले। सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने अपना हृदय कठोर कर लिया और जब फैंग चेन बोल रहा था तो वह उसे गौर से देखने लगा। उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि फैंग चेन यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। परेशान क्यों होना, तुम्हें जीने का रास्ता दिया गया था लेकिन तुमने मौत का रास्ता चुना। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? यद्यपि यह कुछ अपमानजनक है, कम से कम मैं जीवित हूं और केवल जीवित रहकर ही मुझे मौका मिल सकता है। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। फैंग चेन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ के एक झटके से उनके शरीर फट गए, उनकी आत्माएं और हौसले नष्ट हो गए। पलक झपकते ही वह पूरी तरह नष्ट हो गया। दोनों को गिरते देख आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। सर्प कुल का पवित्र पुत्र ऐसे ही गिर गया है। जीवन कितना अप्रत्याशित है। मुझे संदेह है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सर्प कुल का पवित्र पुत्र दिव्य पत्थर मंडप में मरेगा, और इतने अपमानजनक तरीके से। प्राचीन राक्षस सर्प कुल का पवित्र पुत्र ऐसे ही नष्ट हो गया। अपने आसपास की भीड़ की आहें सुनकर फैंग चेन ने शांति से कहा, वह तो एक पवित्र पुत्र है। राक्षस जाति और सांप जाति उसकी जगह ले सकती है। शायद राक्षस जाति और सर्प जाति मुझे धन्यवाद देंगी। इस राक्षस जाति का पवित्र पुत्र उतना अच्छा नहीं है और अगला पवित्र पुत्र उससे भी अधिक उत्कृष्ट होगा। क्या ये मानव भाषा है? सबके होंठ फड़कने लगे, वे पूरी तरह अवाक हो गए। इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, अन्य लोग तो आपको मारना चाहेंगे। हालांकि फैंग चेन की पहचान को देखते हुए ऐसा लगता है कि सांप कबीले जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं। सर्प वंश के पवित्र पुत्र की मृत्यु निम्न कौशल के कारण हुई थी और उसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार समय बहुत लंबा है और अनगिनत प्रतिभाएं और विलक्षण प्रतिभाएं इसी तरह नष्ट हो चुकी हैं। चाहे वह प्राचीन दानव जाति हो या मानव जाति, ऐसे विलक्षण लोग हुए हैं जो गिर गए हैं। प्रत्येक युग में अनगिनत प्रतिभाएं पैदा होती हैं, लेकिन बहुत कम ही वास्तव में प्रसिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में एक शब्द ही इसका सार है, निर्दयी। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दूसरे विचार के हत्या करो। बिल्कुल, पवित्र पुत्र युन्तियन की क्या स्थिति और पदवी है? अन्य लोग प्राचीन राक्षस जाति और सर्प जाति से भयभीत हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं। सर्प कुल का पवित्र पुत्र गिर गया है, इतिहास की लंबी धारा में ऐसा पतन एक सामान्य घटना है। ये कहना होगा कि यह युन्तियन पवित्र पुत्र वास्तव में शक्तिशाली है। सर्प कुल का पवित्र पुत्र कमजोर नहीं है, कम से कम सम्राट राज्य में तो नहीं, लेकिन युन्तियन पवित्र पुत्र के सामने वह एक चींटी के समान है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि यह पवित्र पुत्र युन्तियन अपने साधना स्तर को छुपा रहा है। क्या यह अफवाह नहीं थी कि वह हाल ही में सम्राट क्षेत्र में पहुंचा है? कौन जानता है, ये बताना बहुत कठिन है कि ये संदेश सत्य है या असत्य। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र सर्प कुल के पवित्र पुत्र को आसानी से दबा सकता है। ऐसी शक्ति किसी साधारण संत लोक साधक से कम नहीं है। ये सचमुच एक भयानक अस्तित्व है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो तो वह तियानिक्सुआन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन जाएगा। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र वास्तव में एक सम्राट का आचरण रखता है। यंग तियानई और सर्प वंश के पवित्र पुत्र दोनों पलक झपकते ही नष्ट हो गए। उनके पास फैंग चेन का विरोध करने का भी मौका नहीं था, जो बहुत अवास्तविक लगा, विशेष रूप से महान झोऊ राजवंश के दूसरे राजकुमार जैसे विलक्षण लोगों के लिए। उनका मानना था कि वे फैंग चेन से बहुत अलग नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि यह अंतर बहुत बड़ा है। वे सर्प वंश के पवित्र पुत्र के लगभग बराबर थे और कुछ मायनों में उनसे भी कमतर। यहां तक कि शक्तिशाली सर्प कुल पवित्र पुत्र को भी फैंग चेन ने आसानी से मार डाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति भी बेहतर नहीं थी। यदि वे होते तो परिणाम वही होता। संत सोन युनतियन, आपने हमारे दिव्य पत्थर मंडप के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी है। आपको आगामी नीलामी में जरूर शामिल होना चाहिए। हान शान कड़वाहट से मुस्कुराया। चाहे वह यंग तियानी हो या सर्प वंश का पवित्र पुत्र, उनकी पहचान सरल नहीं है। अब जबकि वे दोनों अपने दिव्य पत्थर मंडप में मर चुके हैं, तो उनके पीछे का राक्षस शाही परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। वे शायद क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर कुछ भी न करें, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे दिव्य पत्थर मंडप पर अपना गुस्सा निकालेंगे या नहीं। हालांकि हान शांसी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। दिव्य पत्थर मंडप इतने सालों से तियानिक्सुआन दुनिया में खड़ा था, और यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई उकसा सके। आखिरकार यह एक बड़ी ताकत थी। यदि दूसरा पक्ष उन पर अपना गुस्सा भी निकालता है, तो भी उन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया। वैसे भी वह हमेशा कुछ दिव्य पत्थरों को खोलने के बाद चला जाता है। युनतियान पवित्र पुत्र, मैं आपके शब्दों से निश्चिंत हो सकता हूँ। हान शांसी ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखते हुए कहा, सभी लोग, हालांकि अभी थोड़ी सी अड़चन आई थी, लेकिन अब मामला संतोषजनक ढंग से सुलझ गया है और नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। ये सुनकर सभी ने उनकी भावनाओं का समर्थन किया। वाइस पवेलियन मास्टर हान, हम आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहे थे। हान शांसी में इतनी हिम्मत है कि वह इतनी बड़ी घटना को छोटी घटना कह रहा है। अन्यथा क्या हमें ये कहना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ी डील है और फिर दिव्य पत्थर की नीलामी रद्द कर देनी चाहिए? ईगल तियानी और सर्प वंश का पवित्र पुत्र दोनों मर चुके हैं। खैर, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि नीलामी सामान्य रूप से शुरू हो, ताकि हम एक दिव्य पत्थर प्राप्त कर सकें और जा सकें। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे कुछ नहीं मिला था। इस बार मैं इससे कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। उनके चारों ओर का वातावरण फिर से जीवंत हो गया, मानो ये लोग यंग तियानई और सर्प वंश के पवित्र पुत्र के पतन को भूल गए हों और अपना सारा ध्यान दिव्य पत्थरों की आगामी नीलामी पर केंद्रित कर दिया हो। जैसे ही हान शांसी केंद्र की ओर बढ़े, उन्होंने आज की पवित्र पत्थर की नीलामी शुरू होने की घोषणा की। आज की पहली दिव्य पत्थर की नीलामी 50,000 स्पिरिट पत्थरों से शुरू होगी, जिसमें प्रत्येक बोली में कम से कम 100 स्पिरिट पत्थरों की वृद्धि होगी। जैसे ही हान शांसी ने बोलना समाप्त किया, एक आवाज गूंजी। अध्याय 22, संत स्तरीय दिव्य अस्त्र, 9 गहन आत्मा मुहर, 50,000 आत्मा पत्थर। फैंग चेन सीधे चिल्लाया। वह बोली इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसे पत्थर आकर्षक लगा था और उसने सोचा कि वह इससे कुछ निकाल सकेगा। पवित्र पुत्र, क्या तुम इस दिव्य पत्थर की असाधारण प्रकृति देख सकते हो? हुआ मिंगलिंग ने फैंग चेन को बोली लगाते देखा और उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। बोली न केवल ऊंची थी, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के लगाई गई थी, मानो उन्हें पता हो कि अंदर कुछ अच्छा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पत्थर देखने में अच्छा लग रहा है। शायद इसके अंदर कुछ अच्छा है, फैंग चेन ने उदासीनता से कहा। वह जेड विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए वह इस कीमती पत्थर का जादू नहीं देख सका। वह यहाँ सिर्फ पत्थरों पर जुआ खेलने का रोमांच अनुभव करने आया था। चूंकि उसके पास उस दिव्य पत्थर के आर पार देखने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसे अपनी मर्जी से नीलाम कर सकता था। उसने सोचा कि दिव्य पत्थर बहुत अच्छा है, इसलिए उसने उसे लेने का फैसला किया। मैं ये दिव्य पत्थर पवित्र पुत्र को दूंगा। मुझे इसमें कुछ भी विशेष नहीं दिखता, इसलिए इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। क्या ये सचमुच ऐसा है? क्या आप बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो? शायद अभी जो कुछ हुआ था, उसके कारण सभी ने फैंग चेन को बहुत महत्व दिया। अपनी पृष्ठभूमि या ताकत की परवाह किए बिना सभी को दूसरे पक्ष को सम्मान देना था, इसलिए किसी ने भी उसे छीनने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, यही कारण है कि वे इस पवित्र पत्थर को अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि इसे कुछ भी अच्छा प्राप्त करना असंभव है। ये देखकर कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, हान शांसी पूरी तरह से असहाय थी। अतीत में इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु बहुत से लोग आकर्षित होते थे, तथा इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती थी। हालांकि फैंग चेन की उपस्थिति में किसी ने भी इसे छीनने की हिम्मत नहीं की, जिसके कारण दिव्य पत्थर की कीमत स्थिर रही। इसके बाद दूसरे दिव्य पत्थर की नीलामी की जाएगी, जिसकी शुरुआती बोली 80,000 स्पिरिट स्टोन होगी, हान शांगसी ने सीधे कहा। अगले ही पल फोंग चेन की आवाज फिर गूंजी, 120,000 स्पिरिट स्टोन्स। फैंग चेन के बोलने के बाद कमरे में कोई और आवाज नहीं थी और किसी ने भी बोली नहीं लगाई। हान शांगसी बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, युतियान, पवित्र पुत्र, मैंने तुम्हें आकर हमारा साथ देने के लिए कहा था, परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं। यदि कोई इसके खिलाफ बोली नहीं लगा रहा है तो नीलामी कैसे जारी रह सकती है? हान शांगसी को वास्तव में यह अच्छा लगता है जब हर कोई किसी चीज के लिए होड़ में लगा रहता है, जिससे कीमत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। अब फोन चेन के कारण किसी ने भी बोली जारी नहीं रखी, जिससे फोन चेन को आसानी से दो दिव्य पत्थर प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। ये सब इसलिए है क्योंकि हर कोई मुझे नीचा दिखा रहा है, फोन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यंग तियानई और सर्प वंश के पवित्र पुत्र को मारने के बाद प्रभाव काफी अच्छा था, कम से कम इससे उसके पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन तो बच सकते हैं। हालांकि उसके पास स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है, फिर भी बेहतर होगा कि वह इन दिव्य स्टोन को आसानी से हासिल कर ले। तीसरे दिव्य पत्थर के लिए भी अन्य पत्थरों की तरह किसी ने बोली नहीं लगाई और इसे फोंग चेन ने 160,000 आत्मिक पत्थरों में खरीद लिया। इससे हान शांगसी को लगभग खून की उल्टी आ गई। अतीत में इन तीन दिव्य पत्थरों के बदले कम से कम 1,000,000 आत्मा पत्थर मिलते थे। फैंग चेन ने नीलामी जीतने के लिए केवल 330,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए। ये सभी शुद्ध सफेद स्पिरिट पत्थर हैं। हान शांगसी के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी, ये डकैती से कम नहीं था। सौभाग्य से फोंग चेन ने तीन दिव्य पत्थरों को प्राप्त करने के बाद बोली लगाना जारी नहीं रखा, अन्यथा शेष दिव्य पत्थरों को संभवतः सबसे कम कीमत पर फोंग चेन को बेचना पड़ेगा। तीन दिव्य पत्थरों को प्राप्त करने के बाद फैंग चेन ने बोली जारी रखने में रुचि खो दी और एक नई नीलामी शुरू करने के लिए उनका उपयोग करने की तैयारी की। हे मेघ स्वर्ग के पवित्र पुत्र, क्या आप चाहेंगे कि हमारे गुरु पत्थर खोलने में आपकी मदद करें? दिव्य पत्थर मंडप के हमारे गुरु अत्यंत पेशेवर हैं। वे सैकड़ों वर्षों से पत्थर खोल रहे हैं और उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, हान शान ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य पत्थर मंडप में पवित्र पत्थर खरीदने के बाद लोग आमतौर पर मंडप के कारीगरों से पत्थर को काटने में मदद मांगते हैं। ये कुशल कारीगर अत्यंत कुशल हैं और सभी प्रकार के पवित्र पत्थरों से परिचित हैं। जब वे पत्थर काटते हैं तो कोई गलती नहीं होती और वे पवित्र पत्थरों को पूरी तरह से चीर सकते हैं। अनावश्यक, फैंग चेन ने हाथ हिलाया। पत्थरों पर जुआ खेलने का मजा लेने के अलावा वह खुद भी पत्थर खोलना चाहता था, जो ज्यादा दिलचस्प होगा। पृथ्वी पर जेड पर जुआ खेलने के विपरीत, पृथ्वी पर उत्कृष्ट शिल्प कौशल के बिना किसी खुरदुरे पत्थर के अंदर मौजूद जेड का मूल्य गिर सकता है। हालांकि तियानिक्सुआन दुनिया में पत्थरों पर जुआ खेलने का तरीका अलग है। दिव्य पत्थरों में अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें सभी प्रकार के खजाने शामिल हैं, जैसे दिव्य हथियार, दुर्लभ और कीमती सामग्री, शक्तिशाली गुप्त तकनीकें, दिव्य गोलियां और दवाएं इत्यादि। जहां तक आपको क्या मिलेगा यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा दिव्य पत्थर को खोलना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है और फैंग चेन इसे किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। चूंकि मैं जेड पर जुआ खेलने का आनंद लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से यह काम स्वयं करना होगा। ये सोचकर फैंग चेन ने एक दिव्य पत्थर निकाला जो एक व्यक्ति जितना लंबा था, अपनी उंगली को चाकू में बदल दिया और उसे सीधे काट दिया। ये देखकर आसपास के कई लोग भयभीत हो गए। ये युनतियान संत बहुत महत्वाकांक्षी है, वह इसे बस आधा काट देता है, क्या उसे कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्री नष्ट होने का डर नहीं है? टकराना, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी कठोर चीज को काट दिया हो, जिससे धातु जैसी झंझनाहट जैसी आवाज उत्पन्न हुई। समझ गया, फैंग चेन मुस्कुराए बिना न रह सका। काटना जारी रखने के बजाय उसने दिव्य पत्थर पर अपनी हथेली से थपथपाया। टकराना, दिव्य पत्थर फट गया, जिससे असंख्य टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। धूल और धुआं उठा, जिसके भीतर प्रकाश टिमटिमा रहा था। जब धूल जम गई तो हवा में चमकती हुई एक हथेली के आकार की डिस्क दिखाई दी। एक भयानक आभा बाहर की ओर फैल गई, मानो कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ वहां खड़ा हो, जिससे सभी के दिल कांप उठे। एक संत स्तर का हथियार, अभी भी एक अक्षुण दिव्य हथियार। सभी लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे, उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। पवित्र पुत्र सचमुच भाग्यशाली है, पत्थर तोड़ने के अपने पहले प्रयास में ही उसे संत स्तर का हथियार मिल गया। महान झोउ राजवंश के दूसरे राजकुमार ने ईर्ष्या से कहा। वह एक दशक से भी ज्यादा समय से दिव्य पत्थर मंडप में काम कर रहा था और अनगिनत दिव्य पत्थर उसके हाथों से गुजरे थे। इतने सालों में उसकी कुल कमाई का मूल्य फैंग चेन के संत स्तरीय हथियार के आधे से भी कम था। ये सच है कि वे कहते हैं कि तुलनाएं खुशी की चोर हैं। आह, कितने साल हो गए जब दिव्य पत्थर मंडप ने संत स्तर के हथियार के समान मूल्य की दिव्य कलाकृति का निर्माण किया था। एक बूढ़े आदमी ने हान शांगसी को देखा और पूछा, लगभग 20 या 30 साल हो गए हैं। हान शांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल वह बेहद खुश था। फैन चेन की संत स्तरीय हथियार चलाने की क्षमता उनके दिव्य पाषाण मंडप के लिए एक बड़ी बात थी, और यह उनके दिव्य पाषाण मंडप के लिए सबसे अच्छा प्रचार था। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने दिव्य पत्थर मंडप से संत स्तर का हथियार प्राप्त कर लेता है, तो ये कई लोगों को लुभाएगा और वे लगातार अपने दिव्य पत्थर मंडप से दिव्य पत्थर खरीदते रहेंगे। यदि हम इसमें युन तियान शेंगजी जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जोड़ दें, तो और भी अधिक लोग इसे खरीदेंगे। इन चीजों से उत्पन्न मूल्य फोंग चेन द्वारा कम कीमत पर दिव्य पत्थर खरीदने से हुए नुकसान से कहीं अधिक है। बेशक हान शांगसी भी इस बात से दुखी थी कि फैन चेन इतनी कम कीमत पर इन दिव्य पत्थरों को हासिल करने में सक्षम था। आखिरकार ये कीमत व्यवहारिक रूप से लागत मूल्य है। हालांकि चूंकि फैन चेन ने एक दिव्य स्तर का हथियार छोड़ दिया है, इसलिए इन नुकसानों की भरपाई जल्दी की जा सकती है। आपको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, आप अभी इसकी भरपाई कर सकते हैं। 8 लाख दिव्य पत्थर। महान झोउ राजवंश के दूसरे राजकुमार को नीलाम हो रहे दिव्य पत्थर में बहुत रुचि थी, और वह उसे जीतने के लिए निर्णायक रूप से बोली लगाने को तैयार था। अन्य लोग भी पीछे न रहते हुए बोली लगाने में शामिल हो गए। 1 लाख 2 लाख आत्मा पत्थर। दूसरे राजकुमार, मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी इस दिव्य पत्थर के प्रति बहुत आकर्षित हूँ। इसे आपसे छीनने की कोशिश करने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, तो फिर देखते हैं कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला कौन जीतता है। 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन। दूसरे राजकुमार ने दूसरी कीमत बताई। जब बात आत्मा पत्थरों की आती है, तो उनके जैसे राजघराने कभी किसी से नहीं डरते। सभी को इसे हथियाने के लिए हाथापाई करते देख हान शांगसी बहुत खुश हुई। बुरा नहीं, बुरा नहीं, क्या इसे ही सेलिब्रिटी प्रभाव कहते हैं। फैन चेन की हरकतों ने तुरंत ही दर्शकों की दिलचस्पी जगा दी। ये कीमत हान शांगसी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी, यहां तक कि एक दिव्य पत्थर भी उन 3 दिव्य पत्थरों के नुकसान की भरपाई कर सकता था जो फैन चेन को मिले थे। 9 गहन आत्मा मोहर। अध्याय 23, यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करना, ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्वर तक पहुंचना। 9 गहन आत्मा मोहर। ये संत स्तरीय हथियार आत्मा को दबाने का प्रभाव रखता है, जो आत्मा स्वर्ग सील के समान है, लेकिन इसका प्रभाव आत्मा स्वर्ग सील जितना अच्छा नहीं है। फैन चेन ने इस संत स्तरीय दिव्य हथियार को महसूस किया और पाया कि यह आत्मा स्वर्ग मोहर के समान है, जिसमें दिव्य आत्मा को दबाने और उसकी रक्षा करने के प्रभाव हैं। यदि किसी शत्रु की आत्मा द्वारा आक्रमण किया जाए तो यह प्रभावी रूप से अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है। यद्यपि 9 गहन आत्मा मोहर काफी अच्छी है, लेकिन यह उसकी आत्मा स्वर्ग मोहर जितनी अच्छी नहीं है। फैन चेन की आत्मा स्वर्ग मोहर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से विरासत में मिली थी। इसमें कुछ सम्राट स्तरीय सामग्रियां हैं, लेकिन इसमें सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ के दावसार का अभाव है। अगर इसमें सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ के दावसार और दाव पैटर्न होते, तो यह सम्राट स्तरीय दिव्य अस्त्र बन सकता था। हालांकि 9 गहन आत्मा मोहर ऐसा नहीं कर सकती। सामान्यतः 9 गहन आत्मा मोहर की ऊपरी सीमा जलती हुई स्वर्ग मोहर के आसपास कहीं भी नहीं है। ये सोचकर फैंग चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर 9 गहन आत्मा मोहर को स्वीकार कर लिया। इसके बाद फोंग चेन ने 2 और दिव्य पत्थर खोले। अन्य 2 दिव्य पत्थर पहले वाले की तरह आश्चर्यजनक नहीं थे, वे तो बस साधारण चीजें थीं। इसका कुछ मूल्य तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये सब करने के बाद फैंग चेन दिव्य पत्थर मंडप से बाहर चला गया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फैंग चेन ने संदेह से भरे चेहरे से हुआ मेंगी को देखा। यह महिला अभी तक क्यों नहीं गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझ पर यह आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं? महाराज, क्या आपको मेरा साथ आना पसंद नहीं आया? हुआ मेंगिंग ने अपनी आंखें झपकाई और छेड़खानी से कहा। आप सही कह रहे हैं, मुझे ये सचमुच पसंद नहीं है। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा। मुख्य कारण यह है कि यह छोटी लोमड़ी बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। वह जहां भी जाती है, वह ध्यान का केंद्र बन जाती है, जो फैंग चेन को पसंद नहीं है। यह उनके शांत तरीके से यात्रा करने के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। कितना पाखंडी है! वह अपने दिल में खुद को थोड़ा शैतान कहता है, लेकिन कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। हुआ मिंगिंग ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बुरी तरह सोचा। ये युन तियान संत सच में दोगला है। अगर मैं ये न सुन पाता कि वो क्या सोच रहा है, तो मैं पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता। पवित्र पुत्र, हालांकि आपको ये पसंद नहीं कि लोग आपका अनुसरण करें, पर उन्हें आपका अनुसरण करना अच्छा लगता है। क्या आप सचमुच उन्हें भगाना चाहते हैं? इसके अलावा पवित्र पुत्र उनके लिए खड़ा हुआ और उस सर्प वंश के पवित्र पुत्र को मार डाला। यदि पवित्र पुत्र चला गया तो उनका क्या होगा? हुआ मिंगिंग ने दयनीयता का अभिनय करते हुए कहा। ठीक है। फैंग चेन असहाय महसूस कर रहा था। अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई है, तो वह चाहे तो उसका पीछा कर सकती है। और इसलिए हुआ मेंगिंग ने फोन चेन का अनुसरण करते हुए वानलिंग शहर का दौरा किया, मूल रूप से पूरे शहर को कवर किया और अंत में रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। फैंग चेन पहले तो जाना चाहती थी, लेकिन हुआ मेंगिंग ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है। एक कमरे में हुआ मेंगिंग ने फैंग चेन को कुछ घबराहट से देखा और कहा, महाराज मुझे आपसे एक अनुरोध करना है, क्या ये ठीक है? बस मुझे बताओ कि यह क्या है? फैंग चेन ने संदेह से भरा चेहरा दिखाते हुए पूछा। ये छोटा सा शैतान आखिर क्या करना चाहता है? महाराज मैं आपसे खेती में मेरी मदद करने का अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? ये कहने के बाद हुआ मेंगिंग ने ये न्यांग दिव्य जल निकाला जो उसने लिन लो वेई से छीन लिया था और अपने हाथ की एक लहर के साथ ये सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। ये न्यांग दिव्य जल, एक मिनट रुकिए, ये चीज हुआ मेंगिंग के हाथों में कैसे पहुंची? क्या ये न्यांग दिव्य जल को जियाओ युनटिंग द्वारा प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए था और फिर लिन लो वेई द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए था? ये देखकर फैंग चेन पूरी तरह से दंग रह गया। मूल कथानक के अनुसार ये न्यांग दिव्य जल को जियो युनटिंग और लिन लो वेई द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए था, तो ये हुआ मेंगिंग के हाथों में कैसे पहुंचा? फैंग चेन के विचार सुनकर हुआ मेंगिंग भी संदेह से भर गई। इस आदमी को कैसे पता चला कि ये न्यांग दिव्य जल लिन लो वेई से चुराया गया था? और यह जियाओ युनटिंग कौन है? जब उसने लिन लो वेई से ये न्यांग दिव्य जल छीना तो स्पष्टतः आसपास कोई नहीं था। ठीक है, अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहिए, हमें काम पर लग जाना चाहिए। हुआ मेंगिंग ने फैंग चेन की ओर देखा और सीधे कहा, महाराज आपके हाव भाव से लगता है कि आप जानते हैं कि यह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। चूंकि मैं आपसे मिलने आई हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे इरादे भी जानते होंगे। हुआ मेंगिंग ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए। वैसे भी फैंग चेन अपनी भावनाओं को समझता था और जानता था कि वह कौन है, इसलिए उसे दिखावा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या उन्होंने सच बता दिया? फैंग चेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने हार मान ली तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हालांकि फैंग चेन ने हुआ मेंगिंग को अस्वीकार नहीं किया। हुआ मेंगिंग उस पर बेहद मोहित थी और इसके अलावा वह एक आकर्षक छोटी लोमड़ी थी जो किसी को भी मार सकती थी। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति कैसे मना कर सकता है? पवित्र पुत्र, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जैसे ही उसने यह बात कही, हुआ मेंगिंग सीधे फैंग चेन के सामने झुक गई। अगले ही क्षण मानो किसी शक्ति द्वारा खींचा गया हो, ये न्यांग दिव्य जल पूरे कमरे में फैल गया और उन दोनों को घेर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ, ये जोरदार गर्जना भूकंप जैसी थी, ये न्यांग दिव्य जल ये न्यांग क्यूई में परिवर्तित हो गया जो पूरे कमरे में फैल गया और दोनों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अगले ही क्षण एक अदृश्य शक्ति फैल गई जिसने चारों ओर के वातावरण को ढक लिया। कमरे के अंदर चाहे कितना भी शोर हो, वह बाहर सुनाई नहीं देता, मानो कमरा अलग थलग हो। एक रहस्यमय शक्ति ने पूरे कमरे को घेर लिया था जो किसी के लिए भी अदृश्य थी। कमरे के अंदर फोन चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई जो सफेद रोशनी से आच्छादित थी। ज्ञान के नौ स्वर्ग, फैंग चेन ने अपनी आभा वापस ले ली और खुद से बुदबुदाया। ये न्यांग दिव्य जल से बपतिस्मा लेने के बाद उनकी साधना पुनः सफल हुई तथा वे ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर पर पहुंच गए और वे शून्य क्षेत्र में वापसी से केवल एक कदम दूर थे। इसके अलावा उसके पास कई गुप्त तकनीकें और एक ताओवादी शरीर है जो उसे संत स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ने की क्षमता देता है। वे अब युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से बहुत आगे निकल गए हैं, जिसकी बराबरी युवा पीढ़ी नहीं कर सकती। एक बार जब वह शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो वह पुरानी पीढ़ी की ताकत की सीमा के भीतर होगा और वह पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा। फैंग चेन ने हुआ मेंगिंग की ओर देखा जो एक तरफ साधना कर रही थी और उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। वास्तव में हुआ मेंगिंग द्वारा यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करना वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से परे था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मूल कहानी की तरह जियो युनटिंग यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करेगा और फिर लिन लो वेई के साथ इसे परिष्कृत करेगा, या शायद जियो युनटिंग ने इसे प्राप्त किया और दूसरों के साथ मिलकर इसे परिष्कृत किया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि हुआ मेंगिंग इसे प्राप्त करेगी और उसके साथ मिलकर इसे परिष्कृत करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जिम्मेदारी से बचने की वजह से कहानी बदल गई? फैंग चेन ने एक पल सोचा। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि उसकी ढिलाई की वजह से कहानी अपनी दिशा से भटक गई थी, लेकिन उसे बहुत अजीब लगा, मानो ये पूरी तरह से उसके आलस्य के कारण नहीं था बल्कि अन्य कारणों से भी था। फिलहाल वह इस बारे में सोच नहीं पा रहा था कि यह क्या है। अगर कहानी बदलती है तो बदलने दो, खैर अगर मैं हार मान लूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। फैंग चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब उन्होंने हार मानने का निर्णय लिया तो ये घटनाएं उनके लिए अप्रासंगिक हो गईं और स्वाभाविक रूप से उन्हें इनकी परवाह नहीं थी। यदि उसे परवाह होती तो वह हुआ मेंगिंग के साथ ये न्यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए सहमत नहीं होता। वास्तव में फैंग चेन अपने दिल में जानता था कि जैसे ही उसने हुआ मेंगिंग के प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसे इनाम का ये हिस्सा नहीं मिलना तय था। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, उसके लिए हार मानने का मामला पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। आप हार मानने या न मानने का निर्णय ले सकते हैं, सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि आप अपना पुरस्कार खो देंगे। अध्याय 24 ऋण चुकाने में असमर्थ, वह केवल कृतज्ञता में स्वयं को अर्पित कर सकता था। इसके अलावा हुआ मेंगिंग पहले से ही इस अवस्था में है, एक सामान्य आदमी कैसे मना कर सकता है। इसकी तुलना में हार मान लेना दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। यिन्यांग दिव्य जल के बिना पुरुष और महिला नायक प्रारंभिक अवस्था में आगे बढ़ने का अपना मौका पूरी तरह से खो चुके हैं, जिससे भविष्य में उनके लिए आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। हालांकि उन दोनों के भाग्य में महानता लिखी है और शायद उन्हें अन्य अवसर भी मिलेंगे, लेकिन ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। फैंग चेन को जियो युनटिंग की परवाह नहीं थी। दूसरा व्यक्ति कैसा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हुआ मेंगिंग का सवाल है, हमें उस पर बाद में विचार करना चाहिए, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। जहां तक उन्हें पता था, मूल कहानी में हुआ मेंगिंग बहुत मुश्किल स्थिति में थी। यद्यपि वह चंद्र महल की पवित्र युवती है, लेकिन उसका व्यवहार चंद्र महल के व्यवहार से असंगत है, जिसके कारण चंद्र महल के उच्च अधिकारियों का उसके प्रति रवैया मित्रतापूर्ण नहीं है। साधारण शिष्य स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते थे, लेकिन चंद्र महल के उच्च अधिकारी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और वास्तव में वह शुरू में पवित्र युवती भी नहीं थी। हुआ मेंगिंग के संत बनने का कारण ये था कि उसका स्वामी एक बहुत ही तुच्छ बूढ़ी चुड़ैल थी, जिसने उसे कुछ उद्देश्यों के लिए संत बनने के लिए मजबूर किया था। उस बूढ़ी चुड़ैल का हुआ मेंगिंग को संत बनाने का कोई अच्छा इरादा नहीं था। ये तथाकथित गुरु शिष्य संबंध के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि हुआ मेंगिंग के पास उसका उपयोग करने के लिए कुछ था। यहां तक कि हुआ मेंगिंग की चंद्रमा महल में अपनी पवित्रता बनाए रखने की क्षमता भी इस बूढ़ी चुड़ैल से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। चंद्र महल जैसे स्थान पर कोई व्यक्ति द्विविध साधना के बिना संत नहीं बन सकता। हुआ मेंगिंग के स्वामी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति को दे सके और उस व्यक्ति का पक्ष जीत सके। ये कहा जा सकता है कि हुआ मेंगिंग शुरू से ही अपने मालिक की मोहरा बन गई थी। मूल उपन्यास में जियो युनटिंग हुआ मेंगिंग का दिल जीतने में सक्षम थी, न केवल इसलिए कि हुआ मेंगिंग को फैंग चेन ने बुरी तरह घायल कर दिया था, बल्कि इसलिए भी कि जियो युनटिंग ने उसे एक नायक के रूप में बचाया था। हुआ मेंगिंग के लिए, जो उस समय निराशा में थी, जियो युनटिंग की उपस्थिति एक सफेद घोड़े पर राजकुमार के आगमन की तरह थी। अब जबकि उसने हुआ मेंगिंग के साथ ऐसा रिश्ता विकसित कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से फैंग चेन निष्क्रिय होकर नहीं बैठेगा। उसी समय एक जोरदार गर्जना गूंजी। हुआ मेंगिंग की साधना भी समाप्त हो गई और उसकी आभा अचानक बढ़ गई, जो सीधे सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई। महामहिम सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने उन्हें बहुत निर्दयता से सताया है। हुआ मेंगिंग फैंग चेन की बाहों में लेटी हुई धीरे से बोल रही थी, तुमने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है, तुम मुझे इसकी भरपाई कैसे करोगे? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वे ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनके पास विवाह के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बाकी जीवन महामहिम के साथ रहना होगा और उनका कर्ज चुकाने के लिए गुलाम की तरह काम करना होगा, हुआ मेंगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो ये पवित्र पुत्र इसे अनिच्छा से ही स्वीकार कर सकता है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक विलासितापूर्ण जीवन जियोगे। क्या आप तैयार हैं? फैंग चेन ने बहुत उदारता से कहा। हुआ मेंगिंग स्वाभाविक रूप से तैयार थी, वह फैंग चेन के साथ रहने में सक्षम होने से अधिक खुश नहीं हो सकती थी। इच्छुक, हुआ मेंगिंग ने शर्माते हुए कहा। वह इसके बारे में केवल कल्पना ही किया करती थी, लेकिन अब जब उसके पास यह अवसर है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के बाकी समय के लिए फैंग चेन के साथ रहने को तैयार है। हालांकि वह अंततः चंद्र महल की पवित्र युवती थी और कुछ चीजों पर निर्णय लेना उसके हाथ में नहीं था। फैंग चेन ने हुआ मेंगिंग की चिंता को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा है अगर आपका राजकुमार युएक्सिया तैयार हो, लेकिन आपके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और तुम शायद मुझसे बेहतर जानते हो कि वह बूढ़ी औरत क्या सोच रही है। अगर तुम वापस चली गई तो तुम्हारे लिए दोबारा बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। मूल उपन्यास में हुआ मेंगिंग को पहले ही पता चल गया था कि उसका मालिक उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उसके पास मून पैलेस से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह उससे बचकर निकलने में असमर्थ थी। क्या ऐसा करने से चंद्र महल आपके क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के साथ युद्ध नहीं करेगा? हुआ मेंगिंग ने चिंतित भाव से कहा। यदि वह ऐसा करती है तो यह निश्चित रूप से चंद्र महल और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के बीच संघर्ष का कारण बनेगा। क्या महाराज चंद्रदेवी ऐसा करने का साहस कर सकते हैं? तुम्हारी मालकिन कोई आसान काम नहीं है, वह इतना कृतघ्न और थकाने वाला काम नहीं करेगी, फैंग चेन ने शांति से कहा। यद्यपि मून पैलेस एक शीर्ष स्तरीय शक्ति है, लेकिन इसकी तुलना क्लाउड हेवन होली लैंड जैसी प्रमुख शक्ति से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपकी बादल स्वर पवित्र भूमि मुझे स्वीकार करेगी? हुआ मिंगिंग अभी भी कुछ चिंतित लग रही थी। वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन केवल तभी जब वह उसे कोई परेशानी न दे। आखिरकार वह चंद्रमहल की पवित्र युवती है और चंद्रमहल का आचरण सभी को ज्ञात है। हालांकि वह अभी भी कुंवारी है, फिर भी कौन इस पर विश्वास करेगा? युन तियान शेंगजी फैंग चेन के साथ उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी, जो कि कुछ ऐसा था जिसे हुआ मिंगिंग नहीं देखना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि हमारी पवित्र भूमि आपको क्यों स्वीकार नहीं करेगी? मैं आपको बता दूं, आप इस पवित्र पुत्र के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। फैंग चेन ने हुआ मिंगिंग की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, वह हजारों वर्षों तक क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की एकमात्र आशा है। पवित्र भूमि में उनका दर्जा स्वाभाविक रूप से ऊंचा था, जो सामान्य पवित्र पुत्रों से अतुलनीय था। ये सुनने के बाद हुआ मिंगिंग को एहसास हुआ कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में फैंग चेन की स्थिति को केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर और 10,000 अन्य लोगों से ऊपर बताया जा सकता है। महाराज, क्या आपको चिंता नहीं है कि परीलिन आपके काम से ईर्ष्या करेगी? हुआ मिंगिंग मुस्कुराए, उसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? वह मन ही मन चाहती है कि वह उससे दूरी बना ले। फैंग चेन ने असंतुष्ट भाव से कहा, राक्षस और सर्प जातियों की पवित्र भूमि के भीतर एक विशाल मंडप के अंदर अनगिनत दीपक रखे हुए थे, जिनकी भयानक लपटें पूरे भवन को रोशन कर रही थीं। इन दीपों को जीवन दीप भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत विशेष दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री से बना है। एक बार जब जीवन शक्ति का संचार हो जाता है, तो दीपक के स्वामी की जीवन विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। जीवन दीपक जितना अधिक चमकीला होगा, उसके स्वामी की जीवन शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होगी। इसके विपरीत, जीवन दीपक जितना अधिक मंद होगा, वह उतना ही अधिक क्षीण होगा। यदि जीवन दीपक बुझ जाए तो इसका अर्थ है कि जीवन दीपक का स्वामी मर चुका है। कई शक्तिशाली शक्तियां महत्वपूर्ण शिष्यों की जीवन शक्ति का निरीक्षण करने के लिए जीवन लैंप का उपयोग करती हैं। यदि इन महत्वपूर्ण शिष्यों के साथ कुछ भी घटित होता तो इन शक्तिशाली शक्तियों को तुरंत पता चल जाता। राक्षस और सर्प जातियों के जीवन दीप मंडप में ये जीवन दीप विभिन्न स्तरों में विभाजित हैं। दीपक जितने ऊंचे होते हैं, उनकी संख्या उतनी ही कम होती है, जिसका अर्थ है कि इन दीपकों के मालिकों का राक्षस और सर्प जातियों में उच्च दर्जा होता है। सबसे ऊपर लगा जीवन दीप अचानक बिना किसी चेतावनी के बुझ गया। वह एक क्षण में ही बुझ गया। क्योंकि यह घटना अचानक घटी, इसलिए जीवन दीप मंडप की रखवाली कर रहे शिष्यों को इसका तुरंत पता नहीं चला। काफी देर बाद शिष्य को एहसास हुआ कि सबसे ऊपर वाला जीवन दीपक बुझ गया है। जीवन दीपक को पाकर शिष्य का शरीर अनायास ही कांप उठा। उसने एक शिष्य को अपने पास खींचा और घबराकर बोला, क्या वह जीवन दीपक महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक है? कौन सा? शिष्य ने सहज ही उस ओर देखा और जब उसने जीवन दीपक को बुझते देखा तो वह तुरंत भयभीत हो गया। महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक बुझ गया है, जो उनके पतन का संकेत है। पृथ्वी पर किसमें इतना साहस है कि वह महामहिम पवित्र पुत्र को मार डाले? दोनों शिष्य तुरंत घबरा गए। पवित्र पुत्र की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ हुआ है, कुछ भयानक हुआ है। हमें इसकी सूचना तुरंत बड़े साहब को देनी चाहिए। दोनों शिष्य शीघ्रता से जीवन दीप मंडप से बाहर चले गए। अध्याय 25, दानव और सर्प कुलों की प्रतिक्रियाएं। जल्द ही जीवन दीप मंडप में कई शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। दूसरे एल्ड, महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक बुझ गया है। एक बूढ़े आदमी ने जल्दी से सर्प वंश के पवित्र पुत्र के जीवन दीपक को देखा। अगले ही क्षण एक जोरदार आवाज गूंजी और एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ, जिससे शिष्यों को घुटन महसूस हुई। महामहिम कहाँ चले गए? बूढ़े आदमी ने पूछा। महामहिम राक्षस और सर्प जातियों के बीच एक उच्च स्थान रखते हैं और उनका भाग्य सर्प जाति के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कोई भी दुर्घटना स्वीकार्य नहीं है। मैंने सुना है कि महामहिम पवित्र पुत्र वानलिंग शहर में जुआरियों के पत्थर के देवता के पास गए थे, एक शिष्य ने उत्तर दिया। ये सुनकर कई बुजुर्गों की भौहें तन गईं। यदि यह वानलिंग शहर में होता तो अधिकांश लोग संभवतः पवित्र पुत्र को छूने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन महामहिम का जीवन दीपक बुझ गया। क्या हुआ? तुरंत जांच करो, पता लगाओ कि किसने महामहिम पवित्र पुत्र पर हाथ डालने की हिम्मत की। चाहे वह कोई भी हो, जो कोई भी हमारे पवित्र पुत्र पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी होगी। हमारे सर्प कुल के पवित्र पुत्र की मृत्यु व्यर्थ नहीं जा सकती, एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे वह कोई भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वे अपने पवित्र पुत्र की हत्या होने पर उसे जाने नहीं देंगे। महामहिम पवित्र पुत्र का पतन हो चुका है, यह एक निर्विवाद तथ्य है। हालांकि हमारा सर्प कुल पवित्र पुत्र के बिना नहीं रह सकता। हमारे अधीन सभी युवा शिष्य प्रतिस्पर्धा करने और पवित्र पुत्र की एक नई पीढ़ी का चयन करने के लिए वापस आएं, एक अन्य बुजुर्ग बोला। अन्य बुजुर्गों ने चुपचाप सिर हिला दिया, कोई आपत्ति नहीं जताई, मानो वे पहले से ही ऐसी चीजों के आदी थे। ये सर्प कुल की विशेषता है, भले ही पवित्र पुत्र अभी अभी गिरा हो, एक नए पवित्र पुत्र को तुरंत चुना जाना चाहिए। सर्प वंश के भव्य हॉल के अंदर सभी उच्च पदस्थ सदस्य यहाँ एकत्रित हुए, जिनमें प्राचीन कुल प्रमुख स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर थे। मामले की जांच की गई है और पता चला है, महामहिम पवित्र पुत्र की मृत्यु क्लाउड हेवन के पवित्र पुत्र फोन चेन के हाथों हुई थी, और यह हमारा पवित्र पुत्र था जिसने सबसे पहले वार किया था, सांप कुल के तीसरे बुजुर्ग बोले। ये सुनते ही हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अगर पवित्र पुत्र की मृत्यु पुरानी पीढ़ी या किसी कमजोर ताकत के हाथों हुई होती तो वे इस पर बहुत हंगामा मचा सकते थे, लेकिन अगर वह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के हाथों मर जाता है तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्या किसी शक्तिशाली बुजुर्ग ने हस्तक्षेप किया है, सांप वंश के दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। इस मामले का फायदा उठाया जा सकेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरानी पीढ़ी का कोई शक्तिशाली व्यक्ति इसमें शामिल होता है या नहीं। यदि कोई शक्तिशाली प्राचीन हस्तक्षेप करता है तो उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा। नहीं, न तो फैंग चेन के संरक्षक और न ही हमारे पवित्र पुत्र के संरक्षक ने कोई कदम उठाया। इसके अलावा न केवल हमारे पवित्र पुत्र की मृत्यु फोन चेन के हाथों हुई, बल्कि विशालकाय ईगल कबीले के यंग त्याने की भी फोन चेन के हाथों मृत्यु हुई। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उन दोनों को फैंग चेन ने पूरी तरह से दबा दिया है और अब प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं है, सांप कुल के तीसरे बुजुर्ग बोले। असंभव, ये कैसे हो सकता है? युन तियान पवित्र पुत्र फोन चेन केवल सम्राट क्षेत्र में है और उसका साधना स्तर हमारे पवित्र पुत्र से भी कम है, वह हमारे पवित्र पुत्र को कैसे दबा सकता है? यह मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। ये बहुत संभव है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी ने हस्तक्षेप किया हो, एक सांप कबीले के बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा। यदि उनका पवित्र पुत्र इस बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के साथ एक महान युद्ध लड़ता और फिर नष्ट हो जाता तो वे इसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि फोन चेन का साधना स्तर उनके पवित्र पुत्र से कम था, फिर भी उसे दबा दिया गया, जो अनुचित है। फैंग चेन ने कुछ समय पहले ही कदम बढ़ाया था, लेकिन वह अभी अभी सम्राट के राज्य में दाखिल हुआ था, वह उनके पवित्र पुत्र का मुकाबला कैसे कर सकता था? तो इसमें कुछ अजीब बात है। भले ही युन तियान शेंगजी की प्रतिभा असाधारण है, लेकिन इतने कम समय में उनके लिए इतना सुधार करना असंभव है। इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि यह फैंग चेन के संरक्षक ही होंगे जिन्होंने ये कदम उठाया होगा। मुझे भी लगता है कि यह मामला सरल नहीं है। ये बहुत संभव है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया हो। युवा पीढ़ी आपस में लड़ रही है, लेकिन पुरानी पीढ़ी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में हस्तक्षेप कर रही है। यह नियमों का उल्लंघन है। वास्तव में चूंकि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने नियम तोड़े और हमारे पवित्र पुत्र को मार डाला, इसलिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। आखिरकार वह हमारे सर्प कुल का पवित्र पुत्र है। आप लोगों को उसकी इच्छानुसार हत्या करने दे सकते हैं, लेकिन हम अपने पवित्र पुत्र को व्यर्थ नहीं मरने दे सकते। सर्प वंश के उच्च अधिकारी यह विश्लेषण करने के बाद उत्साहित हो गए कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शक्तिशाली व्यक्तियों की पुरानी पीढ़ी के लोग संभवतः कोई कदम उठाने वाले हैं। यदि युवा पीढ़ी में टकराव हो जाए और सर्प भगवान का पवित्र पुत्र मर जाए तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। हालांकि यदि क्लाउड हेवन होली लैंड की शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी इसमें शामिल हो जाती है तो यह मामला इतना सरल नहीं होगा। तीसरे बुजुर्ग फैंग चेन की ताकत का परीक्षण करने के लिए हमारे कबीले के ज्ञानोदय क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक को अपने साथ ले जाओ। अगर फैंग चेन हमारे कबीले के ज्ञानोदय क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से नहीं हरा सकता तो इसका मतलब है कि फैंग चेन हमारे पवित्र पुत्र को दबाने की ताकत से दूर है। इसका मतलब ये भी है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, सांप कबीले के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह बोला उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली हत्या की भावना प्रकट हुई। सर्प वंश के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य चुप रहे। वे समझ गए थे कि अगर मेघ स्वर्ग की पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोगों की पुरानी पीढ़ी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तो इससे नियम टूट जाएंगे और अनिवार्य रूप से दो प्रमुख शक्तियों के बीच टकराव होगा। दूसरा पहलू, ये लो, फैंग चेन ने नौ गहन आत्मा मुहर हुआ मेंगिंग को सौंप दी। उसके पास पहले से ही आत्मा स्वर्ग मुहर है, इसलिए नौ गहन आत्मा मुहर उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसे अपने पास रखने से बेहतर है कि इसे आत्मरक्षा के लिए हुआ मेंगिंग को दे दिया जाए। धन्यवाद युवा स्वामी, हुआ मेंगिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन वह औपचारिकता निभाने के लिए खड़ी नहीं हुई और सीधे नौ गहन आत्मा मुहर को स्वीकार कर लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि फैंग चेन की स्थिति को देखते हुए उसके पास निश्चित रूप से ऐसे संत स्तर के दिव्य हथियारों की कमी नहीं थी। संत स्तर के दिव्य हथियार अत्यंत मूल्यवान होते हैं, यहां तक कि शक्तिशाली सेनाओं के पास भी ऐसे हथियार शायद ही होते हैं। इसके अलावा यह एक दिव्य हथियार है जो आत्मा की रक्षा करता है, जिससे इसका मूल्य अकल्पनीय हो जाता है। अगर आपको ये पसंद है तो यह अच्छी बात है। फैंगचेन ने हुआ मेंगिंग के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहना होगा कि हुआ मेंगिंग का चेहरा छूने पर सचमुच बहुत अच्छा लगता है। महाराज, आपने मेरे चेहरे पर इतनी चुटकी काटी है कि अब यह अच्छा नहीं लगता। हुआ मेंगिंग ने नाराजगी भरे भाव से कहा। हालांकि वह मन ही मन खुश थी, उसे यह मनस्थिति बहुत पसंद थी और वह इसके लिए बहुत लालायित थी। हुआ मेंगिंग के लिए ये वह नहीं था जो वह चाहती थी। वह असल में एक स्नेही परिवार चाहती थी और एक शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन जीना चाहती थी। हालांकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं और जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा होता है, जो हुआ मेंगिंग को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जो उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके स्तर के किसी व्यक्ति को कहना चाहिए, फोंग चेन बोला। एक बार जब आप सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो जब तक आपकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो जाती, आप सार रख की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकते हैं। यदि आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आत्मा की मरम्मत के लिए दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है और फिर पुनर्जन्म के लिए शरीर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यह अधोलोक के उस बूढ़े व्यक्ति के समान है जिसकी आत्मा को बहुत अधिक क्षति पहुंची थी और जिसका मूल लगभग समाप्त हो चुका था तथा अब उसकी आत्मा का केवल एक अंश ही वाले स्थान में जीवित बचा था। कुछ देर तक एक दूसरे से छेड़खानी और छेड़छाड़ करने के बाद दोनों सराय से निकल गए और वानलिंग शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बूम, एक जोरदार गर्जना गूंजी। अचानक एक शक्तिशाली दबाव आया और इस दिशा से अंतहीन प्रकाश आया। अध्याय 26, संत स्तरीय विशेषज्ञ हमला। अगले ही क्षण वानलिंग शहर के सभी साधकों की आत्माएं कांप उठी और उनमें से कई विरोध करने में असमर्थ थे। उनके चेहरे मृत्यु की तरह पीले पड़ गए। क्लिक करें। आकाश में एक रास्ता दिखाई दिया और दो विशालकाय जीव प्रकट हुए। एक विशालकाय अजगर था जिसके सुनहरे शल्क थे और जो सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहे थे। साथ ही इससे एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकलती थी और इसकी विशाल पुतलियां सूर्य की तरह पूरे वानलिंग शहर को देखते हुए आकाश में लटकी रहती थीं। संत क्षेत्र, वह प्राचीन सर्प जाति से थे और वह संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। दूसरी ओर एक विशाल चील थी। इसे विशाल गरुड़ कहा जाता है, लेकिन ये कुनपिंग जैसा दिखता है जो आकाश में उड़ता है और सूर्य को ढक लेता है। इसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और यहां तक कि इस विशालकाय बाज के पंख भी सुनहरे हो गए थे। प्राचीन दानव जाति विशालकाय ईगल कबीले से एक संत स्तर के विशेषज्ञ। वानलिंग शहर में दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों के आगमन से बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने आसमान से शहर को देखा और उनकी शक्तिशाली आभा ने शहर के सभी विशेषज्ञों को थरथरा दिया। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र कहाँ है? एक भयानक दबाव के साथ एक जबरदस्त आवाज सभी के कानों तक पहुंची। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र वास्तव में 10,000 आत्माओं के शहर में है। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। सर्प कुल के पवित्र पुत्र और चील तियानी दोनों की मृत्यु में एक स्वर्ग के पवित्र पुत्र के हाथों हुई। ऐसा लगता है कि ये दोनों महान दानव कुल के शाही परिवार बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। क्या ये युवा पीढ़ी के बीच टकराव नहीं था? इन दो प्राचीन राक्षस कुलों के शक्तिशाली व्यक्तियों की पुरानी पीढ़ी इसमें क्यों शामिल हो रही है? प्राचीन दानव जाति ने सीमा पार कर ली है। यदि युन्तियान के पवित्र पुत्र को कुछ भी हो गया तो युन्तियान की पवित्र भूमि शायद उसे जाने नहीं देगी। क्या ये दो राक्षस कुल जीने से थक गए हैं? उन्होंने वास्तव में युन्तियान के पवित्र पुत्र पर हमला किया। क्या वे युन्तियान की पवित्र भूमि से प्रतिशोध से डरते नहीं हैं? क्या ये लोग दर्द और सीखे गए सबक भूल गए हैं? कई लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी और आकाश में दो शक्तिशाली आकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वानलिंग शहर में दो महान दानव शाही परिवारों के दो शक्तिशाली संत क्षेत्र विशेषज्ञों के आगमन, जो युन्तियान शेंगजी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते थे, ने कई लोगों को चौंका दिया। जब पुरानी पीढ़ी युवा पीढ़ी से संबंधित मामलों में शामिल हो जाती है तो स्थिति की प्रकृति बदल जाती है। एक बार नियम तोड़ दिए जाने पर व्यक्ति त्यानिक्सुआन दुनिया में सभी की आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा और परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह अनायास ही 10,000 साल पहले की घटना की याद दिलाता है। इसी कारण से मेघ स्वर्ग की पवित्र भूमि ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर दिया था, जिससे एक प्राचीन दानव राजपरिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और फिर कभी अपनी शक्ति वापस नहीं पा सका। इससे विश्व को क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की शक्ति का भी ज्ञान हुआ। मैं यहाँ हूँ। फैंग चेन इस शक्तिशाली दबाव से जरा भी नहीं डरा। वह आसमान की ओर ऐसे चला जैसे वह समतल जमीन हो। आसमान की ओर और दो सेंट रियल विशेषज्ञों की ओर देखते हुए उन्होंने शांति से कहा, दो सेंट रियल विशेषज्ञ सेना में शामिल हो रहे हैं, क्या यह उन दो निकम्मों का बदला लेने के लिए है? लेकिन आपके ऐसा करने का क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि आप दोनों इसका जवाब जानते होंगे। अपने पीछे संरक्षकों के साथ फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इन दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों से डरता नहीं था और उनके दबाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं और हमें ये याद दिलाने के लिए आप जैसे किसी कनिष्ठ की आवश्यकता नहीं है। हम आज यहाँ केवल एक बात जानने के लिए आए हैं, क्या हमारे सर्प कुल के पवित्र पुत्र और विशालकाय चील कुल के प्रतिभाशाली यंग तियानई की मृत्यु आपके मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि के पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के प्रभाव में हुई थी? यदि आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हैं, भले ही आप हैं, हमारी दो प्राचीन राक्षस जातियां इसे कभी नहीं जाने देंगी। सर्प वंश के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने फोंग चेन को ठंडी निगाहों से देखा और बोला। ये सुनकर फैंग चेन अचंभित रह गया, फिर शांति से बोला, वरिष्ठों, आप में बहुत हिम्मत है। 10,000 साल पहले टाइगर डेमन कबीला भी आपकी ही तरह की स्थिति में था और मुझे उनके अंतिम भाग्य के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। विशाल का ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया, आपके स्वर से लगता है कि क्या आप डरे हुए हैं? तुम अभी हाल ही में सम्राट के राज्य में घुसे हो और अभी कुछ ही महीने हुए हैं। तुम्हारे पास सर्प कुल के पवित्र पुत्र या हमारे विशालकाय चील कुल के अद्भुत प्राणी को मारने की ताकत नहीं है। इन दो विलक्षण प्रतिभाओं का तात्कालिक पतन संभवतः आपके क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शक्तिशाली व्यक्तियों की पुरानी पीढ़ी के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। क्योंकि फोंग चेन के पास आत्मा स्वर्ग मुहर है, यहां तक कि संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसके साधना स्तर को नहीं समझ सकते। उन्होंने सोचा कि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र में था। कितनी हास्यास्पद बात है, अगर मैं इन दो बेकार चीजों को मार डालूंगा तो शायद हमारी पवित्र भूमि के अन्य शक्तिशाली लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। फैंग चेन ने उपहास किया, हे बच्चे, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए हम आज अपने कुल के दो ज्ञानोदय क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ लाए हैं। अगर तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो तो हम अपने सर्प कुल के पवित्र पुत्र के पतन को स्वीकार कर लेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र में हिम्मत है, सर्प कुल के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर फैंग चेन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, अन्य प्रमुख शक्तियां अपने स्वयं के कबीले की प्रतिभाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करती हैं, लेकिन केवल आपके दो प्राचीन दानव कबीले ही आपके कबीले की प्रतिभाओं को बाहर भेजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम दोनों प्राचीन दानव कुलों को सचमुच प्रतिभा का खजाना प्राप्त है। तुम बस अपने पास मौजूद किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेज दो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे प्रतिभाशाली लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। ये सुनकर कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। वे तो इस घटना के शुरू होने से पहले ही दूसरे पक्ष के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, उनके जैसे सामान्य लोगों की सोच इन प्रतिभाशाली लोगों की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। इसके अलावा कई लोग केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र उसे मारना चाहता है। यदि आपके पास उस तरह की ताकत है तो हम हार मान लेंगे, सर्प कुल के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अब भी लग रहा था कि फैंग चेन उनके सामने दिखावा कर रहा था और इस तरह से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं। अपनी सांसें बर्बाद मत करो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि तुम में क्षमता है या नहीं, विशाल का ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने अधीर भाव से कहा। ठीक है, चूंकि आप सभी त्यांजियाओं का सिर उसके सिर पर भेजने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी होगी, फोंग चेन ने शांति से कहा। तुम्हें जाकर बादल स्वर्ग के इस पवित्र पुत्र से मिलना चाहिए। ये देखकर कि फोंग चेन सहमत हो गया है, दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों ने तुरंत अपने कबीले की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भेज दिया। तुरंत ही दोनों विलक्षण प्रतिभाएं हवा में ऊपर उठ गईं, उनकी आभा बढ़ गई और एक शक्तिशाली दबाव फैल गया। वे दोनों ही अत्यधिक कुशल थे, एक पांचवें स्तर का छीमिंग क्षेत्र विशेषज्ञ था और दूसरा छठे स्तर का छीमिंग क्षेत्र विशेषज्ञ था। संभवतः वे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से काफी सावधान थे और उन्होंने अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों को वहां नहीं भेजा, अन्यथा ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर पर सीधे एक पावरहाउस भेजना बहुत अनुचित होगा। आखिरकार सर्प वंश के पवित्र पुत्र और यंग तियानई सम्राट क्षेत्र में ही थे। केवल सर्प कुल का पवित्र पुत्र ही थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, जिसके पास सम्राट क्षेत्र के आठवें स्तर की साधना है। ऐसी शक्ति ज्ञानोदय क्षेत्र के पांचवें या छठे स्तर पर एक विशिष्ट विशेषज्ञ की शक्ति के बराबर है। एक स्त्रीवत चेहरे वाले व्यक्ति ने फैंग चेन की ओर देखा और अहंकार से कहा, यूनतियान के पवित्र पुत्र, मैं सांप कबीले का सदस्य हूँ। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, फोंग चेन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे एक मरते हुए आदमी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही दोनों व्यक्तियों के चेहरे काले पड़ गए और उनमें से जानलेवा आभा निकल पड़ी और वे फोंग चेन को जानलेवा इरादे से घूरने लगे। अध्याय 27, आप जा सकते हैं लेकिन अपना जीवन पीछे छोड़ जाइए। वानलिंग शहर के लोग मन ही मन हैरान थे। यूनतियान शेंगजी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, यहाँ तक कि घमंडी भी, क्योंकि उसने दो प्राचीन दानव कुलों की विलक्षण प्रतिभाओं को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि यदि आप सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और विशालकाय ईगल कबीले के प्रतिभाशाली यंग तियानई को मार भी सकें तो भी यह उल्लेख के लायक नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों केवल सम्राट क्षेत्र में थे। वर्तमान में इन दोनों प्राचीन दानव कुलों के प्रतिभाशाली लोग ज्ञानोदय क्षेत्र में हैं, जिससे वे सर्प कुल के पवित्र पुत्र और चीलत्यानी से स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। चूंकि उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, वे ज्ञानोदय क्षेत्र के पांचवें या छठे स्तर पर सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहां तक कि ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के पास भी उसके खिलाफ जीतने का मौका नहीं हो सकता। दिव्य पत्थर मंडप के शीर्ष पर हानशान ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, क्या युनतियान संत सोन फोनचेन थोड़ा ज्यादा आश्वस्त नहीं है? ये दोनों काफी शक्तिशाली हैं और साथ में वे उस समय के सर्प वंश के पवित्र पुत्र और ईगल त्यानी से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हान शांगसी के बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा इसलिए सोचती हो क्योंकि तुम युनतियान के पवित्र पुत्र को कमानती हो। युनतियान के पवित्र पुत्र की यह पीढ़ी हजारों सालों में सबसे प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा और ताकत दोनों ही पिछले पवित्र पुत्रों से कहीं बेहतर हैं। ये सुनकर हान शान चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने अपने पूर्वज को किसी की इतनी प्रशंसा करते देखा था। हमें जल्द ही इसका उत्तर पता चल जाएगा। ये दो प्राचीन राक्षस जातियां दो और विलक्षण प्रतिभाओं को खोने वाली हैं। ये दो प्राचीन दानव कुल वास्तव में मूर्ख हैं। मेघ स्वर्ग के पवित्र पुत्र की स्थिति और पद के साथ वह पवित्र भूमि के अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकता है? यदि युनतियान के पवित्र पुत्र के मन में ऐसे विचार होते तो वह पवित्र पुत्र नहीं बन पाता, नहीं वह हजारों वर्षों तक युनतियान पवित्र भूमि में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाला पवित्र पुत्र कहलाने के योग्य होता। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और खुद से बोला। उसके स्वर में आत्मविश्वास भरा था, जिससे हान शांगसी और भी उत्सुक हो गया। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, पूर्वज, चूंकि आपको इस फैंग चेन पर इतना भरोसा है तो यह एक अच्छा शो होने वाला है। मुझे आशा है कि स्वर्ग के बादलों का ये पवित्र पुत्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और मुझे निराश नहीं करेगा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, तो बेहतर होगा कि आप ध्यान से देखें। ये युनतियान पवित्र पुत्र सरल नहीं है, कुछ भी न देखकर चौंके नहीं। उसी समय वानलिंग शहर के आसपास के शक्तिशाली लोग आकाश की ओर देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। क्या स्वर्ग के बादलों का पवित्र पुत्र कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं हो गया है? लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखते हुए संभवतः उसमें कुछ शक्ति भी है। हाहा, अगर युनतियान का पवित्र पुत्र सचमुच शक्तिशाली है तो इन दो प्राचीन दानव कुलों को फिर से भारी नुकसान होगा। वे पहले ही दो विलक्षण प्रतिभाओं को खो चुके हैं और अब वे दो और को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये वाकई अपमानजनक है। ये दोनों राक्षस कुल सचमुच विचित्र हैं। वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेघ स्वर के पवित्र पुत्र में शक्ति नहीं है और यह मेघ स्वर की पवित्र भूमि का कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने ये कदम उठाया? यदि बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से डरता है तो वह बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र होने के योग्य नहीं है। वे इतने सरल सत्य को भी नहीं समझते। ये संभवतः ऐसा मामला है जिसमें शामिल लोग भ्रमित हैं, जबकि आसपास खड़े लोग चीजें स्पष्ट देख रहे हैं, या फिर दूसरा पक्ष इस तथ्य पर विश्वास ही नहीं करना चाहता। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को कम आंकने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। या जैसा कि ये लोग कहते हैं, इसमें शामिल लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, जबकि आसपास खड़े लोग चीजों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। इन दोनों विलक्षण प्रतिभाओं के पतन ने दोनों उच्च पदस्थ दानव देवताओं के लिए शांति से सोचना असंभव बना दिया है। इसके अलावा पहले यह अफवाह थी कि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र तक ही पहुंच पाया था। वह दानव कुल के पवित्र पुत्र, जो सम्राट क्षेत्र के नौवें स्तर पर था, का मुकाबला कैसे कर सकता था? कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर उन्होंने स्थिति की जांच करने तथा अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से ज्ञानोदय क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजा। यदि फैंग चेन के पास वह ताकत नहीं है तो दो प्रमुख दानव कबीले एक बड़ा उपद्रव करेंगे और फिर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर हमला करेंगे। बिल्कुल, यदि फैंग चेन में इतनी ताकत है तो वे दो और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खो देंगे। स्पष्टतः वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि फैंग चेन में ये क्षमता है, अन्यथा वे ऐसा नहीं करते। चलो ये करते हैं, सर्प कुल के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने ऊंची आवाज में कहा। एक ही आदेश पर इन दोनों प्रतिभावानों का दबा हुआ गुस्सा सीधे तौर पर फूट पड़ा। तुरंत ही एक विशाल आभा फैली और एक शक्तिशाली बल ने सीधे फैंग चेन पर हमला किया। अपने आप को अधिक आंकना, फैंग चेन ने दो खतरनाक आकृतियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने छिपना बंद कर दिया और नौवें स्तर के ज्ञानोदय क्षेत्र के साधक के रूप में अपनी आभा को उन्मुक्त कर दिया, जिससे एक भयानक दबाव फैल गया और तुरंत ही पूरे वानलिंग शहर को अपने घेरे में ले लिया। इस भयावह आभा के अंतर्गत दोनों राक्षस जाति के प्रतिभाशाली लोगों की आभा चंद्रमा की चमक के लिए होड़ कर रहे जुगनुओं की तरह थी, पूरी तरह से असुरक्षित। असंभव, ये कैसे हो सकता है? फैंग चेन की आभा को महसूस करते हुए दो राक्षस कबीले के प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। वादा किया गया सम्राट राज्य कहाँ है? ये ज्ञानोदय का क्षेत्र है। और यह कोई साधारण ज्ञानोदय का क्षेत्र नहीं है। ये वास्तव में ज्ञानोदय क्षेत्र का 9वां स्तर है। यदि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र में होते तो भी वे अपने श्रेष्ठ क्षेत्र और संख्या के आधार पर उसे हरा सकते थे। हालांकि यदि फैंग चेन ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है तो उनके पास कोई मौका नहीं है। फैंग चेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति व्यवहारिक रूप से उसी क्षेत्र में अजेय हैं जिसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। स्वर्ग और पृथ्वी सील तकनीक। फैंग चेन ने ठंडी आवाज में अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका न देते हुए सीधे हथेली से वार किया। अगले ही क्षण एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, मानो उसमें पूरी दुनिया समाहित हो और वह अंतरिक्ष को ही चकनाचूर कर देगा। फैंग चेन के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए राक्षस जाति के दो प्रतिभाशाली प्राणी बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाए। फैंग चेन की हथेली ने उन्हें सीधे मारा और चींटियों की तरह दबा दिया। रुकना, ये देखकर कि फैंग चेन उन दोनों को मारने वाला था, दोनों संत क्षेत्र विशेषज्ञ अब और शांत नहीं बैठ सके। दो विलक्षण प्रतिभाओं का पोषण करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा ये दोनों प्रतिभाएं पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र तक पहुंच चुकी हैं, और यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो वे अनिवार्य रूप से संत क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। यदि ऐसी विलक्षण प्रतिभा का पतन हो जाए तो ये किसी भी महान पवित्र भूमि के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। तुमने सीमा पार कर ली है। इस समय एक शांत आवाज गूंजी, अत्यंत शांतिपूर्ण, बिना किसी शक्तिशाली दबाव के, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह। हालांकि इस आवाज ने दोनों संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को उन दो विलक्षण प्रतिभाओं को बचाने के लिए आगे बढ़ने से रोक दिया। वे बस असहाय होकर देखते रहे कि कैसे दोनों प्रतिभाएं फैंग चेन द्वारा दबा दी गईं और अंततः नष्ट हो गईं। एक मध्य अवस्था संत क्षेत्र विशेषज्ञ। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी प्रमुख शक्ति के लिए रणनीतिक परिसंपत्ति होते हैं और आमतौर पर उनका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाता। लेकिन अब ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में क्लाउड हेवन के पवित्र पुत्र का संरक्षक बन गया है। केवल अब उन्हें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में फैंग चेन की स्थिति का एहसास हुआ। तुम्हारे दोनों राक्षस कुलों के चमत्कारिक योद्धा पहले ही गिर चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें सर्प कुल के पवित्र पुत्र और चील तियानी को मारने की ताकत है? यदि नहीं तो फिर बेझिझक और अधिक प्रतिभाओं को प्रयास करने के लिए भेजें। जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरी पसंदीदा चीज प्रतिभाशाली लोगों को मारना है। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर देखा और शांति से कहा। दोनों संत स्तरीय विशेषज्ञ चुप हो गए। काफी देर बाद सर्प कुल के संत स्तरीय विशेषज्ञ ने आखिरकार कहा, आप में क्षमता है, हमने आपको गलत समझा है। अब इन दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग चेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। दरअसल जब फैंग चेन ने ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर का खुलासा किया तो वे पहले ही समझ गए थे कि ज्ञानोदय क्षेत्र के ये दो प्रतिभाशाली लोग फैंग चेन के सामने कुछ भी नहीं थे। सर्प कुल के पवित्र पुत्र और यंग तियानई को भी फैंग चेन ने मार डाला, क्योंकि फैंग चेन में ऐसा करने की ताकत थी। ये कहने के बाद दोनों संत क्षेत्र विशेषज्ञ मुड़े और चले गए। तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो? ये ऐसी चीजें नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सको। हमारी युनतन पवित्र भूमि पर ध्वंस जमाना इतना आसान नहीं है। आपके लिए कुछ न छोड़ना अनुचित होगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी क्यों नहीं छोड़ देते? फैंग चेन ने ठंडी आवाज में कहा। अध्याय 28। चार संत स्तरीय दिव्य अस्त्रों के कारण दानव जाति को भारी क्षति हुई। ज्ञानोदय क्षेत्र का एक साधक दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों के जीवन को कैसे बचा सकता है? अतीत में यह एक पूर्ण मजाक होता, लेकिन अब कोई भी फैंग चेन के शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। फैंग चेन की हरकतों ने सबको चौंका दिया है। इसके अलावा फैंग चेन जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में, जो ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, उसके पास एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को पीछे छोड़ने की क्षमता है। आप क्या करना चाहते हैं? इन दोनों संत क्षेत्र विशेषज्ञों को भी एहसास हुआ कि वे गलत थे और उनका रवैया पहले जैसा सख्त नहीं था। हालांकि वह बेहद दुखी था, फिर भी उसने फैंग चेन से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फैंग चेन स्वयं का नहीं बल्कि युनतियान पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज उनके कार्य स्पष्ट रूप से गलत थे। यदि कोई फैंग चेन को उनकी श्रेष्ठ साधना के कारण डराने की कोशिश करता है तो उन्हें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से अभिवादन प्राप्त होगा। उस समय क्लाउड हेवन पवित्र भूमि सही होगी और वे स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाएंगे। मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि ऐसे अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकती है? आपका जीवन बेकार है तो आप दोनों अपने पीछे दो संत स्तरीय हथियार क्यों नहीं छोड़ जाते? बेशक अगर आपको लगता है कि यह इसके लायक नहीं है तो आप अपनी जान बख्श सकते हैं, फैंग चेन ने शांति से कहा। उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे दूसरे पक्ष के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें अधिक से अधिक एक ही वस्तु दूंगा, सर्प कुल के संत क्षेत्र विशेषज्ञ बोले। क्या तुम मजाक कर रहे हो? संत स्तरीय दिव्य अस्त्र अमूल्य हैं। उनके जैसी प्राचीन राक्षस जातियों के लिए भी एक संत स्तरीय अस्त्र खोना अत्यंत कष्टदायक होता है। एक साथ दो अस्त्र खोना तो दूर की बात है। संत स्तरीय दिव्य अस्त्र बनाना इतना आसान नहीं है। जरूरी सामग्री की तो बात ही छोड़िए, ये सामग्री बेहद दुर्लभ होती है और कई तो मिल भी नहीं पाती। साथ ही जाली संत स्तरीय दिव्य हथियार को अभी भी एक संत स्तरीय विशेषज्ञ द्वारा पोषित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि आप दोनों संत स्तर के दिव्य हथियार को अधिक महत्व देते हैं। फैंग चेन ने उन दोनों की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजी। सर्प वंश संत क्षेत्र विशेषज्ञ का शरीर बिना किसी चेतावनी के फट गया। विशालकाय शरीर फट गया और खून आसमान में फैल गया। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ का रक्त, विशेष रूप से एक प्राचीन दानव जाति का, निश्चित रूप से एक महान टॉनिक है। बहते हुए खून को देखकर वानलिंग शहर के शक्तिशाली लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। संत क्षेत्र विशेषज्ञ के रक्त में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, जो कुछ पवित्र औषधियों के समान होती है, जो इसे अत्यंत मूल्यवान वस्तु बनाती है। प्राचीन राक्षसों का रक्त विशेष रूप से दुर्लभ है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, विशालकाय ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने जल्दी से कहा। ये देखकर वह भी घबरा गया। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ बिना किसी चेतावनी के ऐसे ही गंभीर रूप से घायल हो गया। वह सर्प कुल के संत स्तर के विशेषज्ञों की तरह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इस डर से कि फैंग चेन कोई चाल चलेगा, विशालकाय ईगल कबीले के संत स्तर के विशेषज्ञ ने जल्दी से अपना संत स्तर का दिव्य हथियार निकाल लिया। प्रतिद्वंद्वी के सामने एक सुनहरी तलवार प्रकट हुई, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह एक दोषरहित पवित्र श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। विशालकाय ईगल कबीले का ये संत स्तर का विशेषज्ञ काफी समझदार है, लेकिन मुझे आपका अनियंत्रित स्वभाव पसंद है। फैंग चेन ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया, यदि तुम सर्प वंश के पवित्र पुत्र की तरह होते तो मेरे पास तुम्हें मारने का एक कारण होता। संत स्तर के दिव्य हथियारों की तुलना में संत स्तर के विशेषज्ञ प्राचीन दानव जाति के लिए अधिक महत्व रखते हैं, विशेष रूप से उनका सार रक्त, जिसकी प्रत्येक बूंद एक खजाना है। ये सुनकर दर्शकों के होंठ अनायास ही फड़क उठे। क्या तुम सच में उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार नहीं करते? ये बात तुम अपने तक ही रख सकते हो, इसे जोर से क्यों कह रहे हो? अब सब ने सुना, दो महान दानव कुलों के संत लोक विशेषज्ञ इसे कैसे सहन कर सकते थे? मैं उन्हें भी देने को तैयार हूँ। बाद में हमारे दानव और सर्प कुल दोनों हाथों से दो संत स्तरीय दिव्य हथियार प्रस्तुत करेंगे। सर्प कुल का संत क्षेत्र विशेषज्ञ बोलते समय कमजोर दिख रहा था। शेष संत स्तरीय दिव्य हथियार हमारे विशालकाय ईगल कबीले द्वारा बाद में वितरित किए जाएंगे, विशालकाय ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि फैंग चेन अवसर का फायदा उठाएगा और उसे मौका देगा। जैसा कि कहा जाता है, परिस्थितियां लोगों को झुकने पर मजबूर कर देती हैं, उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्या इन संत क्षेत्र विशेषज्ञों में कोई रीढ़ नहीं है? जवाब साफ तौर पर ना है। ये संत क्षेत्र विशेषज्ञ अपने अपने गुटों में उच्च पदों पर थे और अपनी युवावस्था में वे सबसे प्रशंसित प्रतिभावान भी थे। अंदर ही अंदर वे बहुत अहंकारी होते हैं और दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। उन्होंने भी कठिनाइयां सहन की हैं, अन्यथा वे आज तक जीवित नहीं रह पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से झुकने और खींचने में सक्षम होने के सिद्धांत को समझता है। अगर हम अभी पीछे नहीं हटे तो हमारी जान जा सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। अगर तुम 1 घंटे के भीतर संत स्तरीय दिव्य हथियार नहीं पहुंचा पाए तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत देना, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो वह अभी भी उन दो लोगों को मारना चाहता था। 1 घंटा, क्या ये नामुमकिन सी बात नहीं है? हाहा, दूसरे पक्ष को यहाँ आने का पछतावा होना चाहिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ से जाने में असमर्थ होगा। ऐसा लग सकता है कि क्लाउड हेवन का पवित्र पुत्र दूसरे पक्ष को एक मौका दे रहा है, लेकिन वह वास्तव में इन दो लोगों को मारना चाहता है। ये सही है, क्या यह इन दो लोगों को मारने का एक बहाना मात्र नहीं है? ये सच है, जब तक आपके पास ऐसी शीर्षस्थ शक्ति को दबाने की शक्ति नहीं है, तब तक आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी न किसी कारण की आवश्यकता होगी। बिना किसी कारण के इससे जनता का गुस्सा भड़कने की पूरी संभावना है। 1 घंटे से भी कम समय बाद आकाश से एक भिनभिनाहट की आवाज आई और शून्य फट गया। उसमें से दो शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुई, उनके चेहरे गंभीर थे। दोनों से प्रकाश निकलता था जो एक दूसरे के चेहरे को ढक लेता था, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से वानलिंग शहर के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। जू चान कोन, क्या आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ऐसा करके जनता के क्रोध को भड़काने से नहीं डरते? शक्तिशाली व्यक्ति ने धीमी आवाज में चिल्लाया, फिर अपना हाथ लहराया, जिससे दो संत स्तरीय हथियार सीधे उनकी ओर उड़े। ये राक्षस सर्प कुल का एक शक्तिशाली सदस्य है, जिसकी शक्ति अथाह है। ऐसा लगता है कि वह फैंग चेन के संरक्षक से अच्छी तरह परिचित है। हम विशालकाय ईगल कबीले आज जो हुआ उसे याद रखेंगे। यद्यपि इन दोनों राक्षस कुलों के शक्तिशाली व्यक्ति बड़े अहंकार के साथ बोलते थे, तथापि उन सभी ने अपने संतस्तर के हथियार सौंप दिए। एक जोरदार धमाके के साथ चार संतस्तरीय हथियार आकाश में मंडरा रहे थे, जिनसे एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिससे वानलिंग शहर में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों की आंखें चमक रही थी। वे संतस्तर के हथियार हैं और एक साथ उनमें से चार हैं। इनमें से कोई भी हथियार वानलिंग शहर में रक्तपात मचा सकता है। और यहाँ बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र फोन चेन भी है। जैसे ही हमारा पवित्र पुत्र जन्म लेगा, हम निश्चित रूप से तुम्हारा सिर ले लेंगे। विशालकाय ईगल कबीले के शक्तिशाली सदस्य ने फोन चेन को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, बाद में इंतजार क्यों करें? क्या हम अभी नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि आपके विशाल ईगल कबीले का पवित्र पुत्र एकांत में नहीं है, उसके पास अभी बहुत समय है। वह आज क्यों नहीं आया? क्या वह डरा हुआ है? फोन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दूसरों को ऐसे कठोर शब्दों से डराना एक बात है, लेकिन उसे भी क्यों डराना? संभव है कि फैन चेन को अच्छी तरह पता था कि ये लोग सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे। फक फक करना, ये देखकर कि फैन चेन ने उसका पर्दाफाश कर दिया है, उस शक्तिशाली व्यक्ति का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह एक अन्य संघ क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ चला गया। दानव और सर्प जातियां जानती थीं कि मेघ स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र तीव्र बुद्धि वाला और वाकपटु था। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अध्याय 29, ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक 20 वर्षीय युवक। वह किस स्तर का प्रतिभाशाली या विलक्षण व्यक्ति है? गुरुजी, अब मैं चौथे क्षेत्र स्वर्गीय मूल क्षेत्र में पहुंच गया हूं। यदि मैं इस बार उस वरिष्ठ की विरासत प्राप्त कर सका तो मुझे 5वें क्षेत्र दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और मेरी शक्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। जब 2 महीने में पवित्र भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता आएगी तो मैं निश्चित रूप से अपने लिए एक नाम बनाऊंगा और हर किसी को मुझे याद रखेगा। जियो युनटिंग। एक सराय में यात्रा से थके हुए शियाओ युनटिंग ने एल्डमिंग के साथ बातचीत करते हुए खाना खाया। उसके उदास चेहरे पर अब मुस्कुराहट और धैर्य की झलक दिखाई देने लगी। इस अवधि के दौरान जियाओ युनटिंग ने स्पष्ट रूप से अच्छी प्रगति की है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यदि उस जेड के अंदर का पता असली है तो इसमें क्यूई मिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ की विरासत है, जो आपकी ताकत को छलांग और सीमा से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। 2 महीने का समय पर्याप्त है। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप 5वें लोक दिव्य मूल लोक तक पहुंच जाएंगे, फिर भी यदि आप दिव्य मूल लोक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो भी यह आपकी साधना को स्वर्गीय मूल लोक के 8वें स्तर या उससे ऊपर तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। मैं तुम्हें जो गुप्त तकनीकें दे रहा हूं, उनके आधार पर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में बहुत कम लोग तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अपनी सतर्कता कम मत करना। हमेशा आपसे ज्यादा सक्षम लोग होते हैं और पहुंचने के लिए हमेशा ऊंचे स्तर होते हैं। क्लाउड हेवन होली लैंड जैसी शक्तिशाली शक्ति में अनगिनत प्रतिभाएं होती हैं। अगर आपको अवसर मिले तो अन्य प्रतिभाओं को भी मौका मिल सकता है, एल्डमिंग ने उसे याद दिलाया। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को छोड़ने के बाद से जियो युनटिंग को बहुत अच्छी किस्मत मिली है। यद्यपि हमें कुछ खतरों का सामना करना पड़ा, फिर भी हम हर बार स्थिति को बदलने में सक्षम रहे और हर बार हमें बहुत कुछ हासिल हुआ। एक चीज जो जियाओ युनटिंग ने कभी नहीं बदली वह है उसका अहंकार। हालांकि स्वर्गीय स्तंभ संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसके बाद जियाओ युनटिंग पहले से कहीं ज्यादा संयमित और कम अधीर हो गया। इससे एल्डमिंग बहुत संतुष्ट हुआ और उसे एक बार फिर उम्मीद दिखाई दी। यदि जियो युनटिंग इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहें। ये शिष्य स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता है। ये शिष्य अब कोई भोला भाला युवक नहीं है जो अभी अभी स्कूल से स्नातक हुआ है, जियो युनटिंग ने बात की। ये सुनकर एल्डमिंग ने उसे अनदेखा कर दिया और सहजता से कुछ प्रशंसा की। जियो युनटिंग का आत्म महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और अभिमानी स्वभाव उसकी हड्डियों में गहराई से समाया हुआ था और उन्हें बदलना आसान नहीं था। केवल तभी जब एक दिन उसे कोई बड़ा झटका लगे, बहुत बड़ा नुकसान हो या कोई बड़ा झटका लगे तो जियो युनटिंग को बदला जा सकता है। तभी सराय में मौजूद लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्या आपने सुना है कि वानलिंग शहर में क्या हुआ था? ये युनतियान संत पुत्र वास्तव में युवा पीढ़ी के बीच एक विलक्षण प्रतिभा है, जो आसानी से दानव कबीले के संत पुत्रों और विशालकाय ईगल कबीले के प्रतिभाशाली यंगतियानई को दबा देता है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि राक्षस जाति के 2 प्रतिभाशाली लोग बादल स्वर्ग के इस पवित्र पुत्र के सामने शक्तिहीन थे और उन्हें दबा दिया गया और तुरंत मार दिया गया। राक्षस जाति के ये 2 विलक्षण पुरुष कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे अपनी अपनी शक्तियों में युवा पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति हैं। एक महान पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र द्वारा उन्हें कैसे दबाया और तुरंत मार डाला जा सकता है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये सत्य है। राक्षस जाति के ये दो विलक्षण प्राणी बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के सामने बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्लाउड हेवन का पवित्र पुत्र सचमुच इतना शक्तिशाली है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हजारों वर्षों में क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। हालांकि मैंने सुना है कि दानव और सर्प जाति का पवित्र पुत्र सातवें क्षेत्र ज्ञानोदय क्षेत्र, जो सम्राट क्षेत्र का शिखर है, में प्रवेश करने वाला है, वह प्रतिरोध करने में असमर्थ क्यों है? यह अफवाह है कि क्लाउड हेवन का ये पवित्र पुत्र हाल ही में सम्राट दायरे में पहुंचा है, फिर भी उसके पास पहले से ही शीर्ष सम्राट दायरे के विशेषज्ञों को दबाने और तुरंत मारने की ताकत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्प कुल का पवित्र पुत्र कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। भले ही वह सम्राट क्षेत्र के शिखर पर हो, वह ज्ञानोदय क्षेत्र के किसी महाशक्ति से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा यंग तियानी भी कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। वे दोनों एक साथ और भी भयानक हैं। उन्हें कैसे दबाया और तुरंत मार दिया जा सकता है? वानलिंग शहर की खबर फैल गई है, जिससे पूरे तियानिक्सुआन विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। ये बातें सुनकर खाना खा रहे जियो युनटिंग की भूख तुरंत खत्म हो गई। ये लोग बहुत बुरे हैं, वे सचमुच लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बूढ़े मिंग ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। जियो युनटिंग अभी लिन लोवेई और फोंग चेन के बारे में कोई भी खबर सुनना नहीं चाहती है। अब दोनों ही उसके दुश्मन हैं। लिन लोवेई ने उसे लगभग मार ही डाला था, इसलिए वह उसे सीधे तौर पर अपना दुश्मन मानता था। यद्यपि वह फोंग चेन से कभी नहीं मिला था, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से फोंग चेन को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि वह युनतियान पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र का पद प्राप्त करना चाहता था। इसके अलावा लिन लोवेई और फोंग चेन के बीच के रिश्ते ने उसे यह महसूस कराया कि फोंग चेन ने लिन लोवेई को उस पर हमला करने के लिए उकसाया था। इन घटनाओं के कारण जियो युनटिंग के मन में फोंग चेन के प्रति गहरी नाराजगी थी। गुरुजी, अब फैंग चेन कितना ताकतवर है? मुझे उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा? जियो युनटिंग ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, और बूढ़े मिंग को असहायता का एहसास हुआ। सर्प कुल के पवित्र पुत्र और यंग तियानई दोनों ही काफी शक्तिशाली हैं। दानव जाति के एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में फैंग चेन उन्हें आसानी से दबाने और मारने में सक्षम था, इसलिए उसकी शक्ति कम से कम ज्ञानोदय क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। मुझे फैंग चेन के असली साधना स्तर का पता नहीं है। अगर वह केवल सम्राट क्षेत्र में है, तो फैंग चेन की युद्ध शक्ति अथाह है। वह उसी स्तर पर व्यवहारिक रूप से अजेय है, और तुम उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि वह जियाओ युनटिंग को हतोत्साहित नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सच्चाई थी, और एल्डम मिंग असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि जियाओ युनटिंग के लिए वास्तविकता का सामना करना बेहतर है बजाय इसके कि वह आंख मूंद कर अपना जीवन बर्बाद कर दे। क्या होगा यदि उसका साधना स्तर ज्ञानोदय क्षेत्र पर है? जियो युनटिंग ने पूछना जारी रखा। यदि फैंग चेन की साधना ज्ञानोदय क्षेत्र तक पहुंच गई है, तो इसका अर्थ है कि उसकी साधना गति अत्यंत तीव्र है। आपकी वर्तमान साधना गति के साथ आपके लिए फैंग चेन को पकड़ पाना असंभव है, बूढ़े आदमी मिंग ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। कुछ ही महीनों में वह सम्राट क्षेत्र से ज्ञानोदय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। साधना की ऐसी गति अकल्पनीय है। यद्यपि एल्डम मिंग बहुत ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने कभी ऐसा प्रतिभाशाली या विलक्षण व्यक्ति नहीं देखा था जो इतनी शीघ्रता से साधना कर लेता हो। साधना के मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, साधना की गति धीमी होती जाती है तथा आगे बढ़ना कठिन होता जाता है। मुझे विश्वास है कि मैं उससे आगे निकल सकता हूँ, जियो युनटिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आत्मविश्वास से कहा। यह उसका जिद्दी होना नहीं था, यह वह सचमुच महसूस कर रहा था। किसी कारणवश उसे पूरा विश्वास था कि वह फोंग चेन से आगे निकल सकता है। मैंने सुना है कि मेघ स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। मुझे ऐसा ही लगता है। ये सुनकर कि दो महान दानव कुलों के शक्तिशाली व्यक्तियों को लगा कि उनके कुल के विलक्षण पुरुषों की मृत्यु संदिग्ध है, उन्होंने दो विलक्षण पुरुषों को मेघ स्वर्ग के पवित्र पुत्र के विरुद्ध लड़ने के लिए ज्ञानोदय क्षेत्र में भेजा। हालांकि परिणाम वही था, वे सीधे बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र द्वारा दबा दिए गए और मारे गए। इस घटना के माध्यम से हमने ये भी सीखा है कि मेघ स्वर्ग के पवित्र पुत्र की साधना ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर तक पहुंच गई है, और वह शून्य क्षेत्र में वापसी से केवल एक कदम दूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र इतना भयानक होगा। ऐसा लगता है कि मेघ स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र केवल 20 वर्ष का है। जब मैं 20 वर्ष का था, तब मैं केवल सच्चे क्यूई क्षेत्र के पहले चरण में था, जबकि वह पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर पर पहुंच चुका था। ये वास्तव में पुरानी कहावत को सिद्ध करता है, दूसरों से अपनी तुलना करने से आप केवल दुखी ही होंगे। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर जियो युनटिंग चुप हो गया। काफी देर बाद जियो युनटिंग ने अंततः पूछा, गुरुजी, ज्ञानोदय क्षेत्र के नौवें स्तर पर एक 20 वर्षीय विशेषज्ञ, ये किस स्तर की प्रतिभा या विलक्षणता है? ये सुनकर पाताल लोक का बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अध्याय 30 अधोलोक का बूढ़ा आदमी। आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन है। एक प्रतिभाशाली या एक विलक्षण प्रतिभा, इनमें से किसी का भी उपयोग फोन चेन के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जो 20वीं उम्र में ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया हो। एल्दर मिंग हिचकिचाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच बोलें या शियाओ युनटिंग को धोखा दें। जैसे ही एल्दर मिंग गहन विचार में डूबे, शियाओ युनटिंग बोल पड़े, गुरुजी, मैं वास्तव में सच सुनना चाहता हूँ। वास्तव में जियो युनटिंग ये भी बता सकता था कि उसका नेता कभी कभी सच बताने में हिचकिचाता था, शायद इसलिए कि वह उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने से डरता था। उन्हें एक युवा प्रतिभा माना जाना चाहिए, एल्दर मिंग धीरे से बोले। इसके बाद एक और वाक्य आता है, यहां तक कि सबसे होनहार युवा सम्राट भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। उन शब्दों के बिना भी युवा सम्राट का गौरव का मात्र उल्लेख ही जियो युनटिंग को उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त था। जियो युनटिंग ने गहरी सांस ली और इस मामले को पूरी तरह से भूलने की कोशिश की। लेकिन वह ऐसी बात कैसे भूल सकता है? ये देखकर पाताल लोक के बूढ़े व्यक्ति को असहायता का एहसास हुआ। मेरे शिष्य, ज्यादा मत सोचो। लंबे इतिहास में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जिन्हें युवा सम्राट कहा गया है। ये प्रतिभाएं आकाश के तारों की तरह चमकदार हैं, लेकिन वे टूटते तारों की तरह तेजी से गिर भी सकती हैं। आप जानते हैं क्यों? ये कहना होगा कि एल्दर मिंग के पास कुछ तरकीबें थीं और उन्होंने जल्दी से जियाओ युनटिंग को शांत कर दिया, जिससे वह भी उत्सुक हो गया। मास्टर, ऐसा क्यों? जियो युनटिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये बहुत आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी प्रतिभा बहुत चमकदार होती है। जैसा कि कहावत है, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ भी हवा से गिर ही जाता है, और यही बात ऐसी प्रतिभा पर भी लागू होती है। प्रसिद्ध होना निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इससे व्यक्ति आसानी से याद रखा जाता है और निशाना भी बनाया जाता है, विशेष रूप से फैंग चेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जो दो प्राचीन दानव कुल के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आसानी से दबाने और मारने में सक्षम था। उसे प्राचीन दानव कुल द्वारा निशाना बनाया जाना तय है। उसी समय तियानिक सुआन विश्व की प्रमुख शक्तियां भी फोंग चेन पर नजर रख रही होंगी। अगर उन्हें मौका मिला तो वे उसे जरूर नष्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति बड़ा होने पर इन प्रमुख शक्तियों के लिए एक दुस्वप्न बन जाएगा। इतिहास की लंबी धारा में ऐसे कई विलक्षण व्यक्तित्वों का पतन हुआ है। उस समय मैं भी आपकी तरह एक अनजान व्यक्ति था, लेकिन अंततः उस युग के विलक्षण व्यक्तित्व एक के बाद एक पतन की ओर बढ़ते गए। मैं बच गया क्योंकि मैंने अपनी पहचान गुप्त रखी और संत क्षेत्र में भी प्रवेश किया। अगर एक छोटी सी दुर्घटना ना होती तो मैं बहुत पहले ही सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया होता। इसलिए फैंग चेन की अस्थायी प्रतिभा से परेशान मत होइए। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अनगिनत लोगों द्वारा निशाना बनाया जाना तय है, और अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह गिर भी सकता है। यद्यपि युनतियान के पवित्र पुत्र के पास अत्यंत उच्च प्रतिभा और पृष्ठभूमि है, फिर भी वह अजेय नहीं है। मैंने अतीत में युनतियान पवित्र भूमि के दो पवित्र पुत्रों का पतन देखा है। भले ही वे फोंग चेन जितने अच्छे न हो, फिर भी वे बहुत पीछे नहीं थे। हालांकि अंत में वे दोनों ही गिर गए, एल्दर मिंग ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपने अनुभवों के बारे में बताया जिस पर उसे गर्व था। एक अज्ञात दुष्ट साधक से लेकर तियानिक सुआन दुनिया के एक शीर्ष विशेषज्ञ तक, ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि एल्दर मिंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट में उनका मार्ग उन्हें उस मुकाम तक ले जाएगा। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था और वे उन तथाकथित शीर्ष प्रतिभावान लोगों को नीची नजर से देखते थे, क्योंकि उनके विचार में बहुत अधिक चमकदार होना और यह न जानना कि कैसे शांत रहा जाए, मौत को आमंत्रित करने के समान है। मास्टर सही कह रहे हैं, जियो युनटिंग ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि एल्दर मिंग के शब्द समझ में आए और उसके दिल में आत्मविश्वास की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि यह अच्छी बात है कि हर कोई इसे जानता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। क्या आप शाश्वत सम्राट के बारे में जानते हैं? जियो युनटिंग की चकित अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछना जारी रखा। बेशक मुझे पता है, शाश्वत सम्राट ने एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अंततः प्रत्येक युद्ध के साथ वह मजबूत होता गया, सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराया और एक महान सम्राट बन गया। शाश्वत सम्राट, वह सभी साधकों के हृदय में आदर्श हैं, जियो युनटिंग ने जल्दी से कहा। शाश्वत सम्राट का नाम पूरे तियानशुवान जगत में गूंज उठा। इसके अलावा शाश्वत सम्राट एक बहुत ही विशिष्ट सम्राट थे। उनमें उन महानतम प्रतिभाओं जैसी प्रतिभा नहीं थी, वे एक साधारण व्यक्ति थे। फिर भी अपने साधारण शरीर के साथ उन्होंने संघर्ष करके अपना रास्ता निकाला और अंततः सम्राट के राज्य में प्रवेश किया। आपका मतलब है कि अनंत काल के महान सम्राट, जो शुरुआत में फैंग चेन की तरह चमकदार थे, सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे। शाश्वत सम्राट को दुनिया तभी जानती थी जब वह संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, और एक दिन के बाद ही वह पूरे तियानिक सुआन विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसके लिए पिछली अस्पष्टता कोई मायने नहीं रखती। हालांकि प्रक्रिया कुछ हद तक कठिन थी, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वह है परिणाम। यदि कोई अच्छा परिणाम नहीं है तो एक शानदार और चकाचौंध प्रक्रिया का क्या उपयोग है। अंत में आप अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह आप पर निर्भर है कि आप एक शानदार प्रक्रिया चाहते हैं या एक अच्छा परिणाम, एल्द मिंग ने गंभीरता से कहा। ऐसा लगता था कि उस आवाज में एक जादू था जो किसी की भी आत्मा को झकझोर देता था। गुरुजी, क्या चुनने की भी कोई जरूरत है? बेशक हमें बेहतर परिणाम चुनना चाहिए। जियो यूंटिंग ने संकोच नहीं किया। वह एक आत्मा महत्वपूर्ण और अभिमानी व्यक्ति था जो अच्छी तरह जानता था कि वह क्या चाहता है, एक अद्वितीय महाशक्ति बनना। अगर कोई उनसे पूछे कि वह अपनी मार्शल आर्ट यात्रा में किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, जियो यूंटिंग बिना किसी हिचकिचाहट के कहेंगे, ये सम्राट क्षेत्र है या यहां तक कि एक महान अमर बनना है। गुरुजी, मैं समझ गया। मैं फोंग चेन से प्रभावित नहीं होऊंगा। भले ही फेंग चेन के पास वह पृष्ठभूमि, प्रतिभा और रुतबा हो जिससे मैं अब इतनी ईर्ष्या करती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि अंत में मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ और आखिर में किसकी हंसी होगी। भले ही मैं अब औसत दर्जे का हूँ, लेकिन जब तक मैं अंततः दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन जाऊंगा, लोग तब भी मुझे याद रखेंगे, न कि कभी गौरवशाली रहे फेंग चेन को। ज़ियाओ यूंटिंग ने मुस्कुराते हुए और अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, ये सोचने का सही तरीका है। एल्द मिंग ने संतुष्टि भरी नजर से कहा, अंततः हम इस व्यक्ति को होश में लाने में सफल रहे। यद्यपि ऐसा करने से उसे अत्यधिक आत्मविश्वास मिला, फिर भी यह उससे बेहतर था कि उसे कड़ी टक्कर मिले और वह अपना रास्ता खो दे। गुरुजी, निश्चिंत रहें, मैं सम्राट राज्य तक अवश्य पहुंचूंगा। उस समय मैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगा और अनगिनत लोग मेरा आदर करेंगे। लंबे समय के बाद भी लोग मुझे ज़ियाओ यूंटिंग को याद रखेंगे, न कि फोंग चेन को। फोंग चेन को इतिहास की लंबी धारा में भुला दिया जाना तय है। जैसे जैसे वह बोलता गया, ज़ियाओ यूंटिंग का आत्मविश्वास बढ़ता गया, मानो वह भविष्य में स्वयं को सम्राट राज्य तक पहुंचते हुए देख रहा हो। मास्टर, तुम पर विश्वास करते हैं? बूढ़े मिंग सहमत हुए, लेकिन अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। एक और बात थी जो उन्होंने नहीं कही। यद्यपि शाश्वत सम्राट बहुत प्रेरणादायक थे, फिर भी उनका अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ था। समय की लंबी नदी में सभी युगों में केवल एक ही महान सम्राट हुआ है। जहां तक अन्य सम्राटों का प्रश्न है, उन सभी ने प्रारंभ से ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अधिकांश सम्राट शुरू से ही अजेय थे, कम से कम अपने साथियों को कुचलने में सक्षम थे, और कई सम्राट तो युवावस्था में ही पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली शासकों को कुचलने में भी सक्षम थे। मेरे शिष्य, अभी भी कुछ बातें हैं जो मैंने नहीं कही हैं। यद्यपि अनगिनत प्रतिभाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर भी कई प्रतिभाएं ऐसी हैं जो चमकने और इस दुनिया में शीर्ष शक्ति बनने के लिए नियत हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या फेंग चेन एक क्षण के लिए उल्कापिंड की तरह चमकेगा या अनंत काल तक तारों की तरह चमकेगा। साथ ही मुझे नहीं पता कि आप एक साधारण जीवन जिएंगे और कभी चमक नहीं पाएंगे, या अंत में अपने गुरु की तरह चमकेंगे और फिर लुप्त हो जाएंगे। यही तो एल्द मिंग ने मन ही मन सोचा।